We have Hindi Bhagavatam? Hindi mein. Reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, 30th chapter, text number 8. Shri Bhagavan Vacha Varam Vrini Dvam Bhadramvo Yuyam Me Nrupanandanaha Sauhardena Pritak Dharma Tushtoham Sauhrudena Vaha Shri Bhagavan Vacha Varam Vrinidvam Bhadram Vo Yuyam Me Nrupanandanaha Sauhardena Pritak Dharmas Tushtoham Sauhrudena Vaha Shri Bhagavan Vacha Varam Vrinidvam Bhadram Vo Yuyam Me Nrupanandanaha Sauhardena Pritak Dharma Tushtoham Sauhrudena Vaha Param Vrinidvam Bhadram Vo Yuyam Me Nrupanandanaha Dauhardena Pritak Dharmas Tushtoham Sauhrudena Vaha Shri Bhagavan Vacha Varam Vrinidvam Bhadram Vo Yuyam Me Nrupanandanaha Sauhardena Pritak Dharma Tushtoham Sauhrudena Vaha Shri Bhagavan Vacha Varam Vrinidvam Bhadram Vo Yoyam Me Nrupanandanaha Sauhardena Pritak Dharma Tushtoham Sauhrudena Vaha
Matajis?
I'll just keep it like this. Tushtoham Sauhrudena Vaha Bhagavanuvacha Vrinidvam Bhadram Vo Yuyam Me Nrupanandanaha Sauhardena Pritak Dharmas Tushtoham Sauhrudena Vaha Shri Bhagavanuvacha
श्री भगवान ने कहा
वरम
वर आशीर्वाद
वृणीध्वम
मांगो
भद्रम
कल्याण
वह
तुम सबका
यूयम तुम सब
मैं
मुझसे
नृपनंदना
हे राजपुत्रो
सौहार्देन
मित्रता से
अपृथक
अभिन्न
धर्माः
कार्य
तुष्टः
प्रसन्न
अहम्
मैं
सौहृदेन
मित्रता से
वह
तुम सबका अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री भगवान ने कहा हे राजपुत्रो मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य क्योंकि राजा प्राचीन परिषद के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन परिषद के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एकमत हो लें किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं अतः उन्हें एकमत नहीं किया जा सकता। ये संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वहाँ एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन परिषद के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान। हरे कृष्णा। हम आप सब भक्तों को स्वागत करते हैं ये रविवार के सुबह के भागवतम के कार्यक्रम में। आज हम जो पढ़ रहे हैं ये भागवत के चौथे स्कंद में प्रचेतों के संबंध में है। ये प्रचेत प्राचीन परिषद राजा के 10 पुत्र हैं और राजा प्राचीन परिषद ने उनको आदेश दी कि आप लोग शादी करो बच्चे पैदा करो लेकिन उसके पहले आप लोग जंगल में जाओ और भगवान की उपासना करो और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करके मन और इंद्रियों को संयम करके उनको शुद्धिकरण करने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करते हैं। लेकिन इधर हम जो पढ़ रहे हैं ये प्रचेतों के तपस्या के बाद जब भगवान पहली बार दर्शन देते हैं अपने 8 भुजों के साथ और विविध अस्त्र हैं भगवान के हाथ में सुंदर दर्शन देते हैं भगवान। तो दर्शन देने के बाद भगवान पहले श्लोक जो उन्होंने बोला ये प्रचेतों को वो ये श्लोक है वरम वृणीध्वम भद्रम वो यूयम मे नृपनंदना। तो भगवान बहुत संतुष्ट हो गए हैं ये प्रचेतों के तपस्या से लेकिन ये प्रचेतों के तपस्या का क्या महत्वपूर्ण चीज है इसमें, वो भगवान बताते हैं कि हे राजपुत्र, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रता पूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति भक्ति में सेवा में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। इस तरह बोलने से भगवान एक महत्वपूर्ण चीज इधर सिखाते हैं कि भक्तों के बीच में जो मित्रता है उसको जो भगवान देखते हैं उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वही हम देखते हैं इस श्लोक से। तो ऐसा बताया जाता है कि ज्ञानी योगी वगैरह लोग जो हैं उनके अंदर मित्रता नहीं होता है, क्योंकि वो अलग अलग अपने अपने तपस्या में रहते हैं। वो लोग जैसे हिमालय में जाते हैं, हिमालय में आप कभी भी नहीं देखेंगे साथ में ऐसे इतने 1000 लोग साथ में बैठकर चर्चा कर रहे हैं किसी कथा की। आप देखेंगे सब लोग अलग अलग, कोई ऋषि मुनि हो नहीं तो योगी हो, वो अपने अपने पेड़ के नीचे बैठा है, अपने कमंडलू लेकर अपने हाथ में लेकर वो कुछ तपस्या कर रहा है, लेकिन वो साथ में नहीं आते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनके बीच में हमेशा मतभेद होता है। आपने सुना होगा ये षड दर्शन जो है, जैमिनी कानाडा कपिला, ऐसे 6 तरह के दर्शन हैं, भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये 6 के 6 दर्शन जो हैं परम सत्य के संबंध में वो सब भिन्न हैं। और ये अलग अलग लोग अलग अलग मतों को पालन करते हैं। ये मुनि शब्द का ही वही मतलब है। मुनि जो हम बोलते हैं इसका यही मतलब है कि जो व्यक्ति का खुद का मत है उसको मुनि कहला गया है। इसलिए मुनियों के बीच में हमेशा झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है। आपने सुना है केशव कश्मीर के बारे में, है ना? वो आया था निमाय पंडित के साथ वाद विवाद करने के लिए। इस तरह वो लोग वाद विवाद करते हैं, तर्क करते हैं, उनके आपस में मिलजुल नहीं पाते हैं, इसलिए वो अकेले अपने आप अपने ही जो भी आध्यात्मिक तरीका है पालन पालन करना चाहते हैं वो खुद पालन करते हैं, अपने आप अपने अपने मन माने चीज़ों को करते हैं। ऐसे ऐसे भारत में अनेक साधु बाबा हैं, ऐसे अनेक संत हैं भारत में है? लेकिन इसमें समस्या क्या है? आप देखेंगे भक्तिदान सरस्वती ने इस तरह की खुद अकेले रहकर भक्ति करना जो है उसको खंडन किया है। भक्तिदान सरस्वती ने एक गीत में दुष्ट माना तुम्हें किशोर वैष्णव, उस गीत में गाते हैं इस तरह निर्जन भजन करना वो सिर्फ एक कैतव मार्ग है, ऐसे वो बताते हैं उसमें। हम क्यों ये बता रहे थे, कभी कभी हमारे इस्कान संस्था में भी, जब इस्कान संस्था बढ़ता गया प्रभुपाद जी के समय में भी, कुछ लोग सोचे कि पहले पहले ब्रह्मचारी गृहस्थ सब लोग मंदिर के अंदर ही रहते थे जब इस्कान बहुत छोटा था। लेकिन जब इस्कान बड़ा हो गया प्रभुपाद के समय में भी कुछ लोग मंदिर के बाहर रहने लगे, तो गृहस्थ लोग मंदिर के बाहर रहने लगे और आते थे जाते थे ऐसे। और कुछ समय के बाद आजकल इस्कान इतना बड़ा हो गया है, कभी कभी लोग इतने दूर दूर प्रदेश में चले जाते हैं, कभी कभी वो किसी मंदिर से जुड़े हुए नहीं हैं, लोग अपने आप अपने घर में अपने आप भक्ति करते हैं, वो ऐसे रहते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम भक्ति जो है ये भगवान और हमारे बीच में है, ये दूसरे लोगों की सहायता की क्या ज़रूरत है, इस तरह कुछ लोगों का सोचना होता है। भगवान है, हम हैं, हम भक्ति करते हैं, हम बहुत नियमित रूप से भक्ति करते हैं, तो भगवान ये इसके बीच में भक्तों की क्या ज़रूरत है। इसके संबंध में हमें ये प्रश्न को पूछना चाहिए हमारे आचार्यों को। हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? पहले पहले हमें भागवत को देखना चाहिए। भागवत में बताया गया है इधर कि भगवान बोलते हैं कि प्रचेतों ने भक्तिमय सेवा की लेकिन मित्रता के साथ उन्होंने की। इस तरह भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं उनकी। कभी कभी लोग बोलते हैं कि कोई बहुत बड़ा संस्कृत का पंडित है। अभी प्रभुपाद जी के 2 शिष्य थे, एक कुंडली प्रभु और एक सत्यनारायण प्रभु नाम के, लेकिन ये दोनों इतने बड़े संस्कृत स्कॉलर बन गए, तो इतने बड़े बन गए, इतने बड़े बन गए कि वो प्रभुपाद के विरुद्ध उन्होंने एक सिद्धांत स्थापन किया। ये बड़ा होने का एक समस्या है। अगर कोई बड़े हो जाते हैं थोड़ा, तो अपने को गुरु से भी बढ़कर मानते हैं वो। तो उन्होंने ऐसे एक किताब लिखी थी, वैकुंठ से एक पत्ता भी नहीं गिरता, ऐसे इवन लीफ के नॉट फॉल फ्रॉम वैकुंठ। उनका बोलना का क्या था, सब जीवात्मा वैकुंठ से नहीं आए हैं लेकिन ब्रह्म ज्योति से आए हैं, ऐसे। तो उसके संबंध में प्रभुपाद के समय प्रभुपाद ने उनको क्लैरिफाई की थी, उसको ठीक किया था उन्होंने। उन्होंने बताया था कि कुछ जीव हैं जो भगवत धाम में अभी रहते हैं, अभी तक भौतिक दुनिया में आए नहीं हैं, उनको भौतिक दुनिया में आने की संभावना है। लेकिन हम लोग जो हैं, हम ऐसे जीव हैं, हम भगवत धाम छोड़कर भौतिक दुनिया में आए हैं। और कुछ जीव हैं वो ज्ञानियों के मार्ग को पकड़कर वो भौतिक दुनिया से मोक्ष प्राप्त करके वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंति अधो अनादृत युष्मदांग्रह। ऐसे ब्रह्म ज्योति से बहुत सालों में रहने के बाद उधर से गिर जाते हैं कुछ जीव। इस तरह प्रभु ने बोला, इस बात की चिंता मत करो तुम, कुछ जीव ब्रह्म ज्योति से गिरते हैं, कुछ जीव भगवत धाम से गिरते हैं, और कुछ जीव हैं जो नित्य सिद्ध हैं, जिनका पतन कभी नहीं होता, जैसे राधा रानी, यशोदा मई और उनकी सखियां, इनका पतन कभी नहीं होता, वो हमेशा के लिए भगवत धाम में रहते हैं। अगर वो आते हैं इस दुनिया में, उसका मतलब है भगवान ने उनको भेजा है, जैसे प्रभुपाद जी को भगवान ने भेजा है। प्रभुपाद का पतन नहीं होता लेकिन भगवान भेजते हैं उनको दूसरे जीवों के उद्धार के लिए। तो ये सब समझाया प्रभुपाद ने उनको, फिर भी उन्होंने अपने मनमाने चीज से, अपने बड़े संस्कृत पांडित्य के द्वारा ये किताब लिखी, जिसके विरुद्ध गवर्निंग बॉडी कमिश्नर GBC लोगों ने भी एक किताब लिखकर सही सिद्धांत को स्थापन किया उन्होंने। ऐसे ये बोलने का मतलब क्या है, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बड़े संस्कृत का पंडित हो, अगर कोई व्यक्ति बहुत मशहूर हो लेकिन अकेले, आजकल आप टेलीविजन को खोलिए सुबह, इतने बड़े बड़े महंत आते हैं उसमें, संत पुरुष आते हैं उसमें, और वो लोग बोलते हैं लेकिन उनका कुछ संस्था नहीं है, वो अकेले रहते हैं। भारत में अगर कोई संत अकेला रहता है तो उसके धनम जनम सुंदरम सब बढ़ जाते हैं उसके, आप देखेंगे। तो एक, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हमारे पूना के एक भक्त थे, दो लोग हैं, एक है दूसरे प्रदेश से इधर आया था, हमारे पूना के भक्तों से जुड़ा था वो। कुछ समय के बाद उसने दीक्षा ली, हाँ, और अकेले अपने आप एक मठ शुरू कर दिया उसने, एक जगह रहने लगा और उसके अनुयायी बन गए और भागवत सप्ताह देने लगा, तो महाराज करके नाम, उसके नाम के साथ महाराज नाम लगा दिया उसने। तो हम कुछ दिनों के पहले मैं गया था, दो तीन हफ्ते के पहले हम गए थे, तो प्रदेश में गए थे हम, तो उनको मिलने के लिए गए थे हम। हमने पूछा उनको, ये क्या आपका नाम के साथ महाराज जोड़े हो तुम, हाँ, और आप आजकल इस्कॉन से जुड़े हुए नहीं हैं, आप अकेले बन गए ऐसे, हाँ, और ये तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि तुम भगवे कपड़े पहने हो, तुमको दूसरे ब्रह्मचारियों के संग में रहना चाहिए, ताकि उनके संग में रहने से तुम गलत मार्ग में जाओगे तो वो आपको पकड़ेंगे, हाँ, आपको सही मार्ग पर लाएंगे, नहीं तो तुम्हें गृहस्थ बनना चाहिए तो आपकी पत्नी पकड़ेगी, हाँ। तो तुम इस तरह अकेले रहते हो और आपके अनुयायी जो है क्या करेंगे, आपको आपको उठाएंगे, ऊपर ऊपर उठाएंगे, आपको ऊपर उठाकर आपको नीचे गिराएंगे ऐसे। तो मैंने बोला बहुत बड़ा खतरनाक है, हा? बड़ा डेंजर है, हा? तो कभी कांग्रीगेशन जो होते हैं, भक्त होते हैं, वो बहुत भावुक होते हैं। आपको मालूम है भावुक, हा? भावुक का मतलब क्या है, किसी एक व्यक्ति से इतना उनको प्रेम बढ़ जाता है कि वो उनको बहुत ऊपर उठाते हैं। ये इस्कॉन का चरित्र है, प्रभुपाद के समय से, जब प्रभुपाद जी अपने धाम भगवत धाम चले गए, उसके बाद से लेकर इस्कॉन में अनेक सन्यासियों का, गुरुओं का भी पतन हुआ है, हा? इसका कारण क्या है, एक व्यक्ति को लोग इतना बड़ा चढ़ाया, प्रभुपाद से भी ऊपर बड़ा चढ़ाया उनको, हा? इतना तक कि उनके टी शर्ट में उनका फोटो डालना, उनको कैप में उनका फोटो डालना, बैच रखना, ये सब करते थे लोग एक समय में। और इसके कारण वो गुरु नहीं तो सन्यासी भी जो होते थे वो अकेले बन गए थे, वो अकेले उनके ही लोगों का वो जैसे राजा और उनके प्रजा ऐसे वो बन गए थे। इसके कारण क्या हो गया, प्रभुपाद के समय में एक ऐसे सिद्ध स्वरूपानंद नाम के एक नाम एक शिष्य था उनका, तो वो ऐसे अलग अलग प्रदेश में प्रचार करते थे। एक समय क्या हुआ, वो सिद्ध स्वरूपानंद के जो अनुयायी होते हैं वो लोग नए नए नाम निकलने लगे, वो बोलने लगे जय जय सिद्ध स्वरूप, जय जय गौर सुंदर, ऐसे उन्होंने नाम लिखा था। क्योंकि दो लोग थे, सिद्ध स्वरूप गौर सुंदर, दोनों मित्र थे और दोनों के अनेक अनुयायी थे, दोनों को इतना बड़ा कर दिया। तो एक बार प्रभुपाद जी उनके मंदिर में गए थे, इस्कॉन मंदिर में देखने के लिए, देखा उधर कि उनके सब लोग बहुत लंबे लंबे बाल बढ़ाया था उन्होंने, और सब ब्रह्मचारी उधर पैंट शर्ट पहने थे सब, वो बोल रहे थे कि हम लोग किताब वितरण के लिए हम इस तरह का कपड़े पहनते हैं, हम साधु के कपड़े नहीं पहनते। तो प्रभुपाद ने उनको बहुत डांटा, बोला कि तुम बहुत डिविएट हो गए हो। डिविएट का मतलब है क्या बोलते हैं, पदभ्रष्ट, पदभ्रष्ट हो चुके हो आप। इस तरह डांट कर उनके अनुयायी को प्रभुपाद ने समझाया। प्रभुपाद ने क्या समझाया, देखो आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप नेता मानते हो, आप उनको नेता इसलिए मानना चाहिए क्योंकि वो परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसलिए। नहीं तो एक अलग व्यक्ति को लेकर बड़ा चढ़ाना बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। जैसे जो दिया होता है, दिया में कोई व्यक्ति तेल डालता रहता है इसलिए तो दिया जलता है ना, तो दिया जो प्रकाश देती है दिया, लेकिन कोई तेल डालने के कारण प्रकाश हमेशा के लिए उस देता रहता है, वो शक्ति आता है। इस तरह हमारे गुरु और उनके गुरु और उनके गुरु परंपरा में आचार्यगण जो होते हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, वो लोगों की कृपा के कारण हमारे ज्ञान का दीप जो है हमारे हृदय में वो जागृत रहता है। ओम अज्ञान तिमिरा अंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया। अगर हमारी संबंध को हम काट देंगे उनके साथ तो हम बुझ जाएंगे अपने जीवन में, हमारे दिव्य ज्ञान वो प्रकाश में नहीं रहेगा। ऐसे जैसे बताया जाता है कि एक स्त्री को उसके पति ने बहुत सुंदर मार्केट से लेकर आया था, उसने सोने का कुंडल दिया था उसको, कुंडल बोलते हैं उसको, तो ये स्त्री बहुत खुश होगी अपनी सहेलियों के साथ। जब बात कर रही थी उसने बोला कि देखो मेरे पति ने दिया है ये कुंडल, कितना सुंदर दिख रही, देखो कितना चमक रहा है। तो उसके एक सहेली ने बोला, उसको सखी ने बोला, कुंडल तो ठीक है लेकिन तुमने ये बात नहीं समझी कि पहले तुमने भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तुमको कान दिया है, अगर कान नहीं तो देता तो तुम्हारे पति ने जो कुंडल दिया वो कैसे पहनोगी तुम। तो इस तरह हमें देखना चाहिए, हम जो लोगों से हम जुड़े हुए हैं, वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गुरु हो, कोई भी हो, उन लोगों की महत्वता कैसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि वो परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब तक वो परंपरा से जुड़े नहीं हैं, अगर हम उनसे जुड़े रहेंगे तो हम भगवत नाम नहीं लौटेंगे। आपने एक कहानी सुना होगा, ऐसे कहानी आता है कि एक सफ़ेद हाथी ये गार्डन में घूम रहा था ऐसे, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था, किसने उसको देख लिया जाकर, वो हाथी बोल भी सका, तो बोल रहा था, तो हाथी ने बोला कि मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं आप लोगों को स्वर्ग लेके जाऊँगा, बोला उसने, चाहिए तो सिर्फ मेरे पूंछ पकड़ लो बस। तो वो आदमी ने बोला कि ठीक है मैं पूंछ पकड़ लेता हूँ, लेकिन मेरे बीवी बच्चे की बात क्या, वो भी आ सकते हैं। हाथी ने बोला ठीक है तुमको जितना लोग लेना है उतना ले लो, तो तुम्हारे पाँव को वो पकड़ लेगी और उसके पाँव को उसके बेटे पकड़ लेंगे, तुम आ जाओ। तो उसने पूछा मेरे मामा मामी की बात क्या, वो आ सकते हैं, मेरे दादा। उसने बोला जितना भी चाहे तुम ले लो, मेरे लिए बार की सवाल नहीं है, मैं उठा सकता हूँ। इस तरह न्यूज़ पूरा फैल गया गांव में, सब लोग एक दूसरे के पाँव पकड़ कर वेट कर रहे थे। तो हाथी ऊपर उठने लगा, है सचे आसमान में उड़ने लगा। तो अनेक लोग एक के पाँव एक पीछे पकड़ रहे थे, लेकिन पूछ रहे थे सब ऊपर, ये ऊपर क्या है, हम किधर जा रहे हैं। तो किसी ने बोला कि हमने सुना कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, पता नहीं कैसे जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को स्वर्ग लेके जा रहे हैं कोई। और किसी ने पूछा, आपस में बात कर रहे थे वो लोग, किसी ने पूछा कि ठीक है ऊपर हमको लेने वाला कौन है वो व्यक्ति। तो किसी ने बोला कि कोई ना, किसी ने बोला मुझे वो हाथी ऊपर सबसे ऊपर। तो किसी ने बोला ये हाथी है, वो शेर है, क्या है वो पता नहीं है। तो क्योंकि जितना दूर आप जाएंगे ना ऊपर से नीचे, उतना लोगों को पता नहीं था, क्योंकि पहले पहले जिसने हाथी का पूंछ पकड़ा उसको मालूम है, लेकिन उसके नीचे वालों को उतना ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन एक आदमी पूछा है, ये सही बात है कि नहीं, ये हाथी है कि नहीं? हाथी बोला, बड़ा हाथी बोला। कितना बोला? ऐसे बड़ा हाथी। हाथ को जब निकला वो क्या हो गया? सब लोग गिर गए नीचे, उसके नीचे जो भी थे ना सब गिर गए ऐसे, क्योंकि उसका कनेक्शन कट हो गया उधर। समझा ना आपने? ऐसे ही पहले पहले भगवान कृष्ण देते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी देते हैं नारद को, नारद देते हैं वेद व्यास को। इस तरह परंपरा में ज्ञान आता है। और जब हमारे परंपरा में आप देखते हैं प्रभुपाद जी का स्थान जो है बहुत एक स्पेशल स्थान है प्रभुपाद जी का। कारण क्या है? प्रभुपाद जी हमारे संस्था का संस्थापक आचार्य हैं, इसलिए तभी प्रभुपाद जी के बाद उनके अनेक शिष्य हैं जो ये संस्था को चला रहे हैं, जो प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं। जितना हद तक वो प्रभुपाद जी के संदेश को पकड़कर अपने जीवन में ईमानदारी के साथ पालन करते हैं, उतना वो उनके अंडर में जो रहते हैं लोग, उनसे दीक्षा लेते हैं, उनको उद्धार कर सकते हैं, जितना वो प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं। और ऐसे महान संत पुरुष हैं, हम देखते हैं सब महाराज लोग इधर आते हैं, हम उनको पालन करते हैं। लेकिन अब उनके बाद अभी अनेक ब्रह्मचार्य हैं, सन्यासियाँ हैं जो पालन करते हैं। हमें ये बात देखना चाहिए कि ये लोग कितने सही ढंग से इनके गुरु के आदेश को पालन करते हैं, GBC के आदेश को पालन करते हैं, ऊपर के जो महात्माएं हैं पुरुषों को, उनको कितना पालन करते हैं, ये देखना बहुत बहुत आवश्यक है। कभी कभी कांग्रेगेशन के लोग ब्रह्मचारियों को बुलाते हैं महाराज, आपने देखा होगा, शायद आप लोग नहीं बुलाएंगे क्योंकि आप लोग भक्त हो, आपको मालूम है। लेकिन नवसिख्या भक्त जो होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं ब्रह्मचारी और महाराज दोनों एक ही हैं, इस तरह वो सोचते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इस्कॉन में 50 उम्र के पहले किसी को संन्यास नहीं दिया जाता है, आजकल नियम है। क्योंकि कभी कभी कोई संन्यास लेते हैं, मन और इंद्रियों को संयम नहीं कर पाते हैं, पतन हो जाता है उनका, और इतना शर्मिंदा की बात है, सब प्रजा थूकता है उनको देखकर। इसलिए इस्कॉन में नियम है, अभी 50 उम्र तक तुम ब्रह्मचारी रहो, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन अनेक लोग ब्रह्मचार्य को देखकर कभी कभी नवसिखे लोग बुलाते हैं उनको महाराज महाराज। और धर्म ऐसा चीज़ है कि उसमें विश्वास की बात आता है। जो व्यक्ति ने आपको एक पद प्रदर्शक के रूप में भक्ति से जोड़ दिया, आपको आपके गुरु से जोड़ा, नहीं तो भगवान से जोड़ा है, उसके ऊपर आप आपके हृदय में एक तरह का कोमलता होता है, नरमता होता है, आप उसको प्रेम करते हो बहुत, क्योंकि उन्होंने लाया हमको भक्ति में। इसलिए अगर ऐसे व्यक्ति के चरित्र में कुछ गलत होता है तो आप उसको किसी के पास जाकर बोलने के लिए भी डरते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वैष्णव अपराध हो जाएगा, नहीं बोलना चाहिए, ये तो बड़े महात्मा हैं, इनका अपराध नहीं करना चाहिए हमें। इस तरह हम सोचकर हम क्या करते हैं, किसी को बोलते नहीं हैं, चुपके चुपके रहते हैं, हम देखते हैं उनके अंदर गलती और आंख बंद कर लेते हैं, सोचते हैं कि इसके बारे में गलत हमें बोलना नहीं चाहिए इसे। इसलिए भक्ति, भक्तिमय सेवा जो हम करते हैं ना, ये करते समय ये सब चीज़ों के ऊपर सावधानी की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे आजकल इस्कॉन में अनेक लोग ज्वाइन करते हैं, कभी कभी कुछ सालों के लिए अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उनके इंडिपेंडेंट मेंटालिटी बोलते हैं उसको, स्वतंत्र स्वभाव के कारण कभी कभी वो अलग हो जाते हैं, या तो मंदिर को छोड़कर चले जाते हैं, नहीं तो मंदिर में रहते हैं, नहीं तो ज़्यादा नहीं रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ऐसे ही ऐसे अनेक लोग हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो कितना जुड़ा हुआ है व्यक्ति उनके गुरु के आदेश को पालन करने में, GBC के आदेश को पालन करने में, वो देखना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर एक डाली है, अगर दूसरे कंपाउंड से आपको इधर एक डाली आता है हरा भरा, हमें समझना चाहिए कि हरा भरा डाली है, क्यों? क्योंकि पेड़ से जुड़ा हुआ है। अगर पेड़ से जुड़ा हुआ नहीं है तो ये सूख जाएगा, है ना? इस तरह हमें देखना चाहिए कि कोई किसी व्यक्ति को हम पालन कर रहे हैं, क्या वो सही ढंग से जुड़ा हुआ है, ये देखना आवश्यक है। इधर बता रहे हैं भगवान कि आप सब 10 के 10 प्रचेत साथ में आकर प्रेममय सेवा, दिव्य सेवा में तुम लगे हुए हो, इसको देखकर मेरे मन में बहुत मुझे प्रसन्नता आता है। इस तरह भगवान बोलते हैं। ये क्या बड़ी बात है, कोई पूछेंगे, साथ में आकर भक्ति करना। हम भी, हमारे पास भी काउंसलर हैं, हम काउंसिलीज हैं। तो ये काउंसलर और काउंसिली के ग्रुप में लोग साथ में आकर अगर भक्ति करते हैं, अब बताए हम साथ में भक्ति करते हैं कि नहीं, लेकिन आप देखेंगे ये साथ में भक्ति करना कब कठिन चलता है, आपके समभक्तों भक्तों के साथ प्रेम में सेवा करना। तो अगर आप प्रचार करते हो करती हो और आपने एक ग्रुप बनाए हैं 10-15 लोगों का 20 लोगों का बनाया है, तो उनके साथ मिलजुलना आपके लिए कठिन नहीं है, वो बहुत आसान है, क्योंकि वो लोग आपके लिए प्रेम करेंगे, आप उनको प्रेम करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रेम करते रहेंगे और बोलेंगे कि हमारा ग्रुप है, आपके ग्रुप से बहुत आप पसंद करेंगे बहुत है। लेकिन आपका विचार क्या है दूसरे काउंसलरों के बारे में, आपके वरिष्ठ भक्तों के बारे में, ये सोचना आवश्यक है। जैसे मैं इधर बैठा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ इतने भक्तों के लिए, और अगर मैं पुणे में ही रह जाऊँगा सब भक्तों के साथ सबका आदर सम्मान स्वीकारते हुए, तो मेरा प्रगति कभी नहीं होगा। क्योंकि मेरे एक वरिष्ठ सीनियर भक्त गोविंद प्रभु मुझे बताते थे कि तुमसे जो भी भक्त जूनियर हैं वो तुमको नीचे खींचने वाले हैं, तुम्हारे पांव पकड़ कर नीचे ही खींचेंगे, वो लोग तुमको उठा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा वो तुम्हारी प्रशंसा करते रहेंगे, वो बोलेंगे कि प्रभु जी आप शुद्ध भक्त हो, महान भक्त हो, हमेशा दंडवत करते रहेंगे वो। तो तुम ये सब दंडवत स्वीकार करके करके तुम्हारा अहंकार जो है बढ़ जाएगा, और जब अहंकार बढ़ जाता है भगवान की भक्ति चला जाता है, रहता नहीं हमारे पास। इसलिए पहले से जब मैं ज्वाइन किया 94 में, हम ज्वाइन किया था इस्कॉन में, उस टाइम से मेरे वरिष्ठ भक्तों ने मुझे सिखाया था कि हमेशा तुम्हारे लिए जो समभक्त होना चाहिए, जो तुम्हारे त्रुटियों को दोषों को डर के बिना बता सकते हैं तुम्हारे पास, और उनके संग करना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, और तुम्हारे से वरिष्ठ भक्त जो हैं उनको आदर प्रणाम करना और उनसे स्फूर्ति लेना, उनकी संग करना, ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस दिन से मैं समझ गया, हम अक्सर जाते हैं हमारे वरिष्ठ भक्तों को मिलने के लिए और हम उनसे सीखते हैं, महीने में 2-3 दिन हमारा कैंप होता है वरिष्ठ भक्तों के साथ, तो उनके साथ संग करना, उनसे सीखना, क्योंकि वो लोग प्रगतिशील लोग हैं और रियलाइज्ड अनुभवी भक्त हैं। हम उनको बुलाते हैं, हम उनके पास जाते हैं, संग करते हैं, उनको दंडवत करते हैं, उनको आदर देते हैं। इस तरह करने से क्या होता है, हमारा अहंकार थोड़ा कम होता है उससे। तो हमारे एक वरिष्ठ भक्त एक उदाहरण बताते थे, राधेश्याम यू आर अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, बट वेन यू कम इन द मिडस्ट ऑफ अस यू बिकम अ स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड। इसका मतलब क्या है, वो बोलते थे मुझे, राधेश्याम तुम पुणे में तुम बड़े मछली हो एक छोटे तालाब में। अगर एक छोटा तालाब है, देखिए इतना ही तालाब है, उसमें इतना बड़ा मछली है, वो बहुत आधा तालाब में वही रहेगा उतना साइज है ना, इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसी मछली को लेके जाकर आप एक समुद्र में डालो, वो इतना छोटा बन जाएगा, है ना, उसका साइज बहुत कम दिखता है। तो जब वो बताते मुझे तुम पुणे में जब रहते हो, तुम पुणे में एक छोटे तालाब में तुम बड़े मछली हो, लेकिन जब तुम हमारे बीच में आते हो तुम बड़े तालाब में छोटा मछली हो। कितने लोगों ने समझा ये बात, हाथ पकड़े हैं, हाँ सब समझ है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम लोगों को कभी छोटा मछली भी बनना चाहिए। तभी मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि मैं आप लोगों को इधर आदेश देता हूँ, आप लोग पालन करते हो, जब मैं जीबीसी मीटिंग में जाता हूँ तभी इतने बड़े बड़े गुरु होते हैं, कभी कभी मेरे मत में जब प्रदान प्रेषित करता हूँ कभी वो स्वीकारते हैं कभी स्वीकारते नहीं हैं, और इस तरह के परिस्थिति में भी मुझे रहने के लिए मीटिंग में जाने के लिए और उनके विचारों को स्वीकारने के लिए मैं तैयार रहना चाहिए, ऐसे बता रहे थे। क्योंकि जैसे पांच उंगली एक समान नहीं है, एक मोटा है, एक छोटा है, एक लंबा है, ऐसे इस तरह हर एक लोगों का मत भी अलग अलग होता है, इसलिए मतभेद आता है। तो वो बता रहे थे कि जब बड़ा मीटिंग होता है हम अपने मत को प्रकट करना चाहिए, लेकिन हमें अनासक्त रहना चाहिए, क्योंकि अगर हरेक व्यक्ति के मत को ऊंचा करना पड़ेगा, नहीं तो अंत में स्वीकारना पड़ेगा, तो कैसे हो सकता है, हम अलग अलग लोगों का अलग अलग मत होता है इसे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम काउंसलर हैं, हमारे पास काउंसिलर्स हैं, वो तो हमेशा सलाम लगाएंगे, सलाम सलाम सल्यूट मारेंगे हमको, उनके साथ प्रेम करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे समभक्त हमारे जैसे, जो समभक्त कौन है, समभक्ता का मतलब नहीं है कि आप जिस साल में भक्ति में आए उसी साल में वो भी भक्ति में आए इसलिए समभक्त है, ऐसा नहीं है। समभक्ता मतलब है जिस तरह कुछ कभी कभी होता है कि आप 2000 में भक्ति में आए, कोई कोई आए 1995 में भक्ति में आए हैं, लेकिन समभक्ता मतलब है आपके जिस तरह के बातों के बाद में आप चर्चा कर सकते हो उस तरह की चर्चा को समझने वाले और आपके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आप उनके साथ जब संग करेंगे तभी भक्त लोग हमारे त्रुटियों को बताएंगे समझाएंगे। तो कभी कभी हम सोचते हैं जो मेरे त्रुटियों को बताते हैं वो मेरा दुश्मन है, जो हमेशा मेरे गुणगान करते हैं वो मेरे बहुत निकट मित्र हैं। क्यों? क्योंकि मेरे मुझे इंद्रिय तृप्ति देते हैं, हमेशा बोलते हैं कि आप महात्मा हो, शुद्ध भक्त हो, आप महान हो, और किसी भी तरह का दोष नहीं देखते हैं, क्या अच्छा है ये। तो भक्सान सरस्वती बोलते थे देखो जो तुम्हारे दोष बताता है वो तुम्हारे कपड़े धोने वाले वाशरमैन के समान है, धोबी के समान है। अगर कोई आपके घर के पड़ोस में रहता है कोई व्यक्ति, वो बोलता है कि तुम्हारे कपड़े को मेरे पास दे दो, मैं रोज धोकर उसको सफाई करके सुखा कर प्रेस करके आपको दूंगा, कि आप नहीं देंगे उसको, और वो भी फ्री में, कुछ पैसे के लिए नहीं। इस तरह आपको जो दोष देने वाले वैष्णव होते हैं, आपकी भलाई सोचने वाले, वो आपके मित्र हैं। और जो आपको प्रशंसा करते हैं सिर्फ आपसे कुछ लूटने के लिए, वो वैष्णव नहीं है। कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कुछ आपसे बाद में मांगने के लिए, तो वो सही वैष्णव नहीं है, ऐसे बताते हैं भक्सान सरस्वती। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैष्णवों को गुणगान नहीं करना चाहिए, दोष देना चाहिए, ऐसा नहीं है। वैष्णवों को हमेशा हमें गुणगान करना चाहिए, लेकिन अगर हम समभक्तों से वरिष्ठ भक्तों से जब हम संग करेंगे तभी हमारी कमियों को हम समझ पाएंगे, और उनसे हम जुड़े रहने से हम भी आगे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम हमेशा हमारे नीचे के भक्तों को देते रहेंगे, उनको प्रचार करते रहेंगे, जैसे कभी कभी हम संडे फीस लेते हैं, इधर कुछ काउंसलर लोग बोलते थे कि प्रभु जी हमारा मीटिंग है संडे फीस के टाइम, हम उधर हमारे लोगों को मीटिंग लेते हैं, तो हम उनको बोलते थे नहीं आप आपके सब मीटिंग को बंद कर दो, आप इधर आकर बैठकर सब भक्तों के साथ सुनना चाहिए हमें, ऐसा हमारे ऊपर कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम सर झुकते हैं, जिसका हम दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे हमारे समभक्त होना चाहिए कोई जो कभी भी डरेंगे नहीं हमको बात करने के लिए, बोलेंगे कि तुम ऐसे गलत किया तुमने, ऐसे बोलने वाले। तो इसलिए भक्तों के संग में भक्ति करना कठिन है। ये क्यों बताते हैं भगवान इनको क्यों गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों के संग में रहकर भक्ति करना कठिन है, क्योंकि कभी कभी भक्त लोग हमारे दोषों को बता देते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं उनके साथ, और कभी कभी हमारी इच्छाओं को हम प्रकट करते हैं लेकिन हमें सुनने वाला नहीं है, इसलिए क्रोध आता है। उदाहरण के लिए अभी हार बनाती हैं सब माताएं हैं, तो हार बनाते समय कोई माता जी बोलेगी मैं राधा रानी की हार बनाऊंगी, दूसरी माता जी बोलती नहीं माता जी मैं हार बनाऊंगी राधा रानी की, पहली माता जी बोलती मैं ही बनाऊंगी, ऐसे तो दोनों माता जी एक के कॉलर को पकड़ कर दूसरा लाफा मारते हैं मैं बनाऊंगी है? तो राधा रानी रोएगी है ना देखकर, अरे तुम दोनों लोग इतना झगड़ा करती हो, इस तरह सोचेंगे। तो इस तरह किसी भी सेवा में कभी कभी हम साथ में आते हैं, मैंने देखा है कि हमारे जो डेटी रूम में जो माला रखते हैं ना हार भगवान को चढ़ाने के बाद, कुछ लोग आकर मांगते हैं मुझे नित्यानंद प्रभु की हार चाहिए मुझे, तो हम बोलते थे कभी कभी उसको अभी भागवतम क्लास में दे दिया हमने, तो कभी कभी लोग झगड़ा करते हैं नित्यानंद प्रभु की नहीं तो राधा रानी की हार हमें चाहिए, वही हार हमें चाहिए दूसरा नहीं चाहिए हमें, ऐसे अगर एक हज़ार लोग बोलेंगे हमें वही हार चाहिए, क्या मिल सकता है सबको? तो भक्तों के बीच में जब हम ग्रुप में आते हैं जैसे मीटिंग लेते हैं, अभी गोपाक्ष मारे जाते हैं, राधानाथ मारे जाते हैं, लोकनाथ स्वामी आते हैं, वरिष्ठ भक्त लोग साथ में आते हैं, 8-10 लोग मिलते हैं, ठीक है हम चर्चा करते हैं कैसे अभी महाराज जी के कार्यक्रम कैसे होना चाहिए। कोई कोई सोचते हैं कि महाराज को हम इनके घर में भेजेंगे, उधर एक कांग्रेशन कार्यक्रम करेंगे, उधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे। कभी कभी क्या है मतभेद आता है इस तरह के मीटिंग में, है कि नहीं है? क्योंकि हर एक का विचार अलग होता है, लेकिन हमें विचार को प्रकट करना चाहिए लेकिन अनासक्त रहना चाहिए। अगर हम सब आसक्त बन जाते हैं मैंने ऐसे विचार दी इसको लोगों ने स्वीकारा नहीं इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं सबके साथ झगड़ा करेंगे हम, इस तरह हम करेंगे ना, इससे क्या होता है वैष्णव के बीच में जो रिश्ता जो है उसमें तेज पहुंचेगा, वैष्णवों को हम रुलाएंगे। अगर हम वैष्णवों को रुलाएंगे तो भगवान कृष्ण हमको रुलाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसा बताया जाता है कि भगवान कृष्ण को हम अकेले प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैं भक्ति करूंगी अकेले, मुझे वैष्णव की जरूरत नहीं है, तो भगवान को हम सीधा पहुंच जाएंगे, इस तरह लोग सोचते हैं। ऐसा भक्ति नहीं हो सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, दोज हु थिंक यू कैन डू डिवोशन सर्विस अलोन दे आर इनसेन, वो पागल हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो सोचते हैं कि मैं भक्ति अकेला कर सकता हूँ, ऐसे सोचने वाले। क्योंकि भक्ति संगम शक्ति कलियुगे, ऐसा बताया गया, शक्ति आता है कलियुग में संग में, संग में आकर जिधर लोग भक्ति करते हैं उधर भगवान मौजूद हैं। और अगर भगवान को हम देखना चाहते हैं, भगवान अपने वैष्णवों के हृदय में बसे हुए हैं, तो वैष्णवों को अगर हम तुष्टि देते हैं, संतुष्टि देते हैं, तो वैष्णव अपने हृदय में बहुत आनंदित हो जाते हैं आपसे। अगर किसी वैष्णव को आप आनंद देते हो तो उनके हृदय में कौन बैठे हैं, भगवान, वो भी आनंदित हो जाते हैं, जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद। अगर आप वैष्णव को संतुष्ट करो, भगवान भी संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भगवान बैठे हैं। इस तरह भगवान को संतुष्ट करना बहुत आसान है, लेकिन भगवान को सीधा संतुष्ट करना उतना आसान नहीं है। अभी देखिए ध्रुव महाराज, कोई बोलेंगे प्रभु जी ध्रुव महाराज ने भक्ति की जंगल में जाकर, हम क्यों भक्ति नहीं कर सकते हैं, अपने घर में रहते हुए अकेले मंदिर में आने की क्या जरूरत है, भक्तों के साथ संग करने के लिए क्या जरूरत है, कोई पूछ सकते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या क्या कहा मालूम है आपको, पहले महीने 3 दिन में एक बार उन्होंने कंदमूल खाया। वो कंदमूल ऐसा फल है जिसमें कुछ भी स्वाद नहीं रहता है उसमें, वो 3 दिन में एक बार खाया उन्होंने। और अगले महीने 6 दिन में एक बार घास फूस खाया, जैसे गाय खाते हैं ना घास फूस, ऐसे वो खा रहे थे 6 महीने में एक बार। तीसरा महीना 9 दिन में एक बार सिर्फ पानी पिया, बस दूसरा कुछ नहीं। चौथे महीने 12 दिन में एक बार थोड़ा श्वास लिया, दूसरे टाइम श्वास ही नहीं लिया उन्होंने। उसके बाद उसके अगले महीने भगवान खुद उनको दर्शन देते हैं। हम में से कितने लोग ध्रुव महाराज के समान भक्ति कर सकते हैं, इस तरह की तपस्या अगर आप कर सकते हैं तो अकेले भक्ति कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हरिदास ठाकुर ने अकेले भक्ति की, हमने सुना है कि वो दिन में 3 लाख नाम जप किया, उन्होंने किसके साथ संग किया, वो अकेले भक्ति किया है। लेकिन आप देखेंगे हरिदास ठाकुर सिद्ध बकल में जब रहते हैं, रोज चैतन्य महाप्रभु आते थे उनको मिलने के लिए। और सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर को साथ में रखा उन्होंने, आप साथ में एक दूसरे के साथ चर्चा करो, भगवत चर्चा करो ऐसे। और आप देखते हैं अनेक गोस्वामियाँ वृंदावन में साथ में आकर एक ही जगह पर, जैसे सिद्ध बकल में तो मदन मोहन मंदिर में, वो साथ में आकर वो चर्चा करते हैं आपस में। गोस्वामियाँ भी, गोस्वामी तो इतने बड़े चढ़े हैं भक्ति में, इतने बड़े लोग हैं, वो भी आपस में आकर चर्चा करते हैं वो लोग। फिर भी कभी कभी आप देखते हैं हरिदास ठाकुर अकेले बैठकर नाम जप करते हैं। लेकिन आपको मालूम है एक बार हरिदास ठाकुर बैठे थे एक गुफा में, बैठकर वो जप कर रहे थे, कुछ वैष्णव लोग आए थे उनको मिलने के लिए। तो गुफा की द्वार था, तो द्वार से वो लोग ऐसे अंदर देख रहे थे, तो हरिदास ठाकुर बैठे थे और उनके पास में एक बहुत बड़ा वो ये सर्प था, अजगर, बहुत बड़ा, इतना साइज का है, बड़ा अजगर पास में वो लेटा था ऐसे। तो सब वैष्णव देख कर डर गए वो, कि ये क्या है, हरिदास ठाकुर ऐसे गुफा में रहते हैं एक सर्प के साथ, बड़ा सर्प के साथ। तो हरिदास ठाकुर ने देखा वैष्णव को कि वैष्णव लोगों को थोड़ा डर हो रहा है अंदर आने के लिए, उनको मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला, वैष्णव लोग ने उनको बोला, हरिदास ठाकुर जी आप कृपया बाहर आ जाइए, हम आपको दूसरा कुटीर बना कर देते हैं, आप शांति से उधर रह सकते हो, उधर जप कर सकते हो। हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है मैं देखता हूँ, एक दिन के लिए मैं देखूंगा, अगर ये सर्प इधर रहना चाहता है तो मैं इसको छोड़कर मैं आपके पास आता हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। लेकिन तुरंत जब उन्होंने बोला ऐसे, वो सर्प उधर से निकल गया, बाहर निकल गया। तो हम में से कितने लोग हैं हम अकेले गुफा में बैठकर सर्प के साथ जप कर सकते हैं। अगर हम घर में बैठे हुए हैं जमीन में, अगर आपको पता चल गया कि पड़ोस के घर में एक सर्प आया है, तो आप तुरंत ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठ जाओगे, आप डर जाएंगे आप, है ना। तो इस तरह भक्ति अकेला नहीं किया जाता है, भक्तों के साथ ही किया जाता है इसे। तो पहले हम उदाहरण लेंगे एक परिवार का। जब एक तरह का बड़ी से कोऑपरेशन सहकार्य, हाँ सहकार्य जो है परिवार में होना चाहिए, छोटे परिवार में अगर वो होता है तो पड़ोसों के साथ सहकार्य हो सकता है, उसके बाद एक ग्रुप में हो सकता है, उसके बाद एक ग्रुप के काउंसलर और दूसरे ग्रुप के काउंसलर काउंसलर वो सब मिल सकते हैं, उसके बाद एक गुरु के शिष्य दूसरे गुरु के शिष्य वो मिल सकते हैं, उसके बाद हम इतने विशाल हृदय वाले हो जाएंगे कि हम किसी भी गौड़ीय वैष्णव को हम देखेंगे हम दंडवत प्रणाम करेंगे, गौड़िया मठ का हो इस्कान का हो किसी का नारायण महाराज का हो किसी का भी हो हम दंडवत प्रणाम करेंगे देखेंगे तो। उसके बाद हम इतने विशाल बन जाएगा हमारा हृदय, कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो, मुसलमान हो, क्रिस्त हो, कोई भी हो, हम देखेंगे अगर वो अपने धर्म को पालन कर रहा है तो हम प्रेम करेंगे उससे। ऐसे इस तरह हमारा हृदय, संकुचित हृदय जो है ना उसको हमें विशाल बनाना चाहिए। शास्त्र बताते हैं पति और पत्नी के जो क्या क्या उनका कर्तव्य है वो शास्त्र बताते हैं। पति जो होते हैं प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर एंड गाइड, तीन चीज बताए गए हैं पति के। पति का कर्तव्य क्या है, उसको पत्नी को जरूरतों को प्रदान करना, जैसे साड़ी, आभूषण और घर की जरूरतें, घर प्रदान करना, गाड़ी प्रदान करना, घर की जरूरतों को प्रदान करना, प्रोवाइडर। प्रोटेक्टर का मतलब है सुरक्षा देने वाला। और ऐसा बताया गया है नारी नाम भूषणम पति, ये नारी जो होती है उसका असली भूषण क्या है, पति है। तो इसलिए पति और पत्नी जब साथ में रहते हैं वो सुरक्षित अवस्था है। प्रभा जी बताते हैं एक तात्पर्य में, जब लक्ष्मी जी नारायण के छाती में श्रीवत्स बनकर रहती है, नहीं तो उनके पदकमल में भगवान नारायण की सेवा करती है लक्ष्मी, उस अवस्था में वो सबसे सुरक्षित है। लेकिन जब वो सुरक्षा को खो बैठती है, जब लक्ष्मण रेखा के बाहर आती है, तो रावण उसको लेके जाता है। आपने सुना होगा रामायण में जब रावण सीता माता को आकाश मार्ग से लेके जा रहा था, उसमें कैसे सीता माता रो रही थी, वो पेड़ पौधों के साथ बोल रही थी, जानवरों को पक्षियों के साथ बुला रही थी, हम वो ऐसे रो रही थी, राम के नाम बुला रही थी और लक्ष्मण के नाम बुला रही थी, कोई उसको बचा नहीं पाए हैं, वो आकाश मार्ग में लेके जा रहा था रावण ऐसे। तो ये उदाहरण को जरा समझिए, जो पत्नी पति के साथ, एक पतिव्रता नारी है, पति के साथ है, वो सुरक्षित अवस्था में है, इसलिए पति को प्रोटेक्टर बता गया है। प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, प्रोटेक्टर एंड थर्ड वन गाइड। गाइड का मतलब है सांसारिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी उसको गाइडेंस देना आवश्यक है। अभी ये तीन क्वालिटीज पति का है, अगर एक पति के अंदर ये तीनों के तीन गुण है, अगर पति बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, बहुत वो अपने परिवार को सुरक्षा देने वाला है, आध्यात्मिक तरीके से भी वो प्रगतिशील है, गाइडेंस देता है, तो वो परिवार बहुत भाग्यशाली परिवार है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है पति जो होता है वो जिम्मेदारी नहीं लेता है, कभी कभी कुछ पति ऐसे हैं एक पत्नी को छोड़कर दूसरे स्त्री के पास जाते हैं। कुछ लोग हैं पति जो मांस खाते हैं, नशा लेते हैं, सारे पैसे को वो बर्बाद कर देते हैं, और कभी कभी ऐसे शराब पीकर रोड में लेटे रहते हैं, तो पत्नी और बेटी आते हैं उसको लेके जाने के लिए, वो बहुत अभाग्यवश कुछ परिवार में ऐसे होता है। कुछ पति हैं जो अपने पत्नियों को पिटाई करते हैं, तो अगर इस तरह करने वाला है पति तो बहुत बड़ा अभाग्यशाली परिवार है। तो ये पति का हो गया। पत्नी का भी पतिव्रता के बारे में शास्त्र में एक वर्णन है। पत्नी का चार गुण बताया गया है। पतिव्रता नारी का मतलब क्या है, हम हमेशा सोचते हैं पतिव्रता नारी का मतलब है वो दूसरे पर पुरुष को देखती नहीं, वो पर पुरुष के साथ साथ जाती नहीं, वो पतिव्रता है। ये अनेक लोगों को भारत में मालूम है, लेकिन उसको छोड़कर और भी चीजें बताया गया शास्त्र में। पहला है जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है वो पहला है। दूसरा है जो पत्नी अपने पति के मतों के साथ अनुकूल है, पत्नी का मत भी पति के मतों के साथ वो अनुकूल रहती है, वो दूसरा है। तीसरा, जो पत्नी अपने पति के रिश्तेदार जो होते हैं उनको भी प्रेम देती है, जैसे कोई देवर होते हैं, नहीं तो पति के माता पिता, पति के भाई बहन, उनका भी वो प्रेम देती है, उनके साथ भी ऐसे बर्ताव करती है जिससे पति खुश होता है, ऐसा तीसरा। और चौथा, वो पतिव्रता की जो व्रत है, जिसका मतलब है अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से आकर्षित नहीं होती है, वो चौथा है। ये चार चीज को पालन करना चाहिए स्त्री को, ऐसे बताया गया है, वो पतिव्रता नारी माना जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आधुनिक स्त्रियां सोचती हैं कि हम भी पुरुष के समान हैं। ये प्रभुपाद के समय में इसके बारे में चर्चा होती थी, अमेरिका में प्रभुपाद प्रचार के लिए गए थे ना, तो एक स्टाफ रिपोर्टर आती है प्रभुपाद के पास और वो पूछती है, स्वामी जी हमने सुना कि वैदिक संस्कृति में आप स्त्रियों को बहुत दबाते हो, आप उनको समान नहीं मानते हो, ये क्यों ऐसे? तो प्रभुपाद जी बोले कि देखो, आत्मा के स्तर पर सब लोग सम हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो जानवर हो, पंडित समदर्शन है, समान। लेकिन शारीरिक रूप से देखा जाए तो उसमें भेद है। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, देखो अभी तुम स्त्री हो, अगर गर्भवती होना है तो तुम ही गर्भवती हो सकते हो अपने घर, आपके घर में, है ना, क्या आपके पति हो सकता है गर्भवती? अगर वो नहीं हो सकता है तो इक्वल कैसे मान सकते हो, ऐसे प्रभुपाद ने पूछा। और प्रभुपाद ने यह भी बोला कि दो लोग होते हैं परिवार में, पति पत्नी होते हैं, अगर दोनों अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और मैं ही परिवार को चलाऊंगा तो क्या होता है, झगड़ा हो जाता है। तो शास्त्र बताते हैं कि पत्नी जो होती है उसको पति के टेम्परमेंट, व्हाट इज अ टेम्परमेंट, मति, स्वभाव, स्वभाव को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसके अनुसार उसकी सेवा करना चाहिए। इस तरह जब एक पत्नी बुद्धिमत्ता के साथ सेवा करती है, वो अपने पति से शादी नहीं करती लेकिन पति के स्वभाव से शादी करती है, ऐसा बोला गया। इससे क्या होता है, पति बिक जाता है और वो जो भी पत्नी बोलेगी वो करेगा वो, ऐसे। तो अनेक उदाहरण है, मंडोदरी आपको मालूम है, रावण की पत्नी है, उसने कितना सेवा की अच्छी तरह रावण की। आप देखेंगे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, जब शादी की उसने, गांधारी ने सोचा कि मेरे पति अंधे हैं, अगर मेरे पास आंख रहेंगे तो मैं सोचूंगी कि मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, इसलिए उन्होंने क्या किया, पट्टी लगा दी, ऐसी बात। इसलिए उनके कारण, उसके कारण क्या हो गया, उनके पतिव्रतता की शक्ति देके बाद में वो अपने सौ जो कुरुपुत्र हैं उनको क्या किया, उन्होंने शक्ति प्रदान किया, सिर्फ आंखों को कोल एक बार कोला उन्होंने, कोल कर इतना शक्ति प्रदान की। इस तरह प्रभुपाद उनके उदाहरण देते हैं, अगर पति योग्य भी नहीं हो फिर भी वो इतना आदर दिया उसने। और एक कथा आता है भागवत में चवन मुनि का, ये चवन मुनि की पत्नी थी सुकन्या, तो ये सुकन्या तो तरुणी स्त्री थी लेकिन चवन मुनि बूढ़ा आदमी था वो बहुत, लेकिन उनके साथ क्यों शादी की वो भी बताया गया है भागवत में। एक बार सुकन्या और उनके पिता दोनों जंगल में जा रहे थे ऐसे ही, तो उन्होंने एक छिद्र देखा भूमि में, उसके अंदर कुछ ऐसे चमक रहा था अंदर, तो सुकन्या तो तरुणी स्त्री थी, वो ऐसे एक तृण को लेकर उसके अंदर घुसा दिया उन्होंने, वो देखने के लिए क्या है चमक रहा है, सोना चांदी जैसे चमक रहा है ऐसे, तो तुरंत अंदर से खून निकलने लगा ऐसे, बाहर इतना खून आ गया बाहर। तो सुकन्या डर गई, अपने पिताजी को दिखाया, पिताजी देखिए कुछ समस्या है इधर, लगता है कि अंदर कुछ कोई आदमी है भूमि के अंदर। तो पिताजी भी डर गए, राजा और बेटी दोनों, तो पास में देखा एक ये था कुटीर था, तो दोनों अंदर पहुंच गए और उधर एक ऋषि मुनि बैठे थे ऐसे ऐसे, एक ध्यान में बैठे थे आंख बंद करके, तो उनको मुनि का नाम था चवन मुनि। उनके पास जाकर राजा खड़े हो गए, बोला कि ये ऋषि जी महामुनि अब समझिए हमने एक बड़ा गलती कर दिया है, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया, कुछ गलती हो गया, अपराध हो गया, खून निकल रहा है पता नहीं। तो वो कैसे खून निकला, क्योंकि ये चवन मुनि की शक्ति से वो ऐसे एक्सपैंड किया था उन्होंने उनको, तो इसलिए उनका ही शरीर से खून निकल रहा था ऐसे, तो ऋषि ये कान खोलकर पूछा उन्होंने, तुम्हारी बेटी की शादी हुआ कि नहीं? तो पिताजी ने बोला नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हारी बेटी को दे दो मुझे। तो उनके साथ शादी हो गई ऐसे चवन मुनि के साथ। तो चवन मुनि एक ओर से देखा जाए तो बूढ़ा आदमी था, वो बहुत बूढ़ा था, साथ साथ ही वॉज ऑल्सो वेरी इरिटेबल। वॉट इज इरिटेबल? ना क्रोधी नहीं, इरिटेबल, हाँ चिड़चिड़ा, करेक्ट वर्ड, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ाने वाला आदमी था। देखिए हम माताओं को पूछ सकते हैं, अगर आपके व्यक्ति आपके पति अगर बहुत बूढ़ा भी हो चिड़चिड़ा भी हो हम क्या करेंगे? आप तुरंत भाग जाएंगे अपने माता के पास, है ना। लेकिन सुकन्या जो है इतना ध्यानपूर्वक अच्छी तरह उसने सेवा की, उसके हृदय को भी चुरा लिया उन्होंने, ऐसा बताया गया भागवत में। तो इस तरह पत्नी के बारे में बताया गया कि पत्नी को सेवा करना चाहिए, पति को पहला है। दूसरा है फेवरेबल टू हस्बैंड्स मेंटालिटी। तीसरा मैंने बोला फेवरेबल टू हस्बैंड्स रिलेटिव्स, पति के माँ बाप, पति के भाई बहन, उनके साथ हम कैसे बर्ताव करते हैं। और चौथा बताया है ये पतिव्रतता की जो व्रत हम लेते हैं उसको पालन करना। तो आप देखते हैं कि कभी कभी माताएं जो होती हैं वो पुरुष से भी ज़्यादा आगे बढ़ी हैं भक्ति में, ऐसा होता है कुछ परिवार में। कुछ परिवार में माता जी की दीक्षा हो जाती है पहले, उसके बाद पति बाद में धीरे धीरे पीछे आता है, वो एक माला दो माला करता है बाद में आता हो, ऐसे हो सकता है कभी। लेकिन ऐसा बताया गया है स्त्रियों के बारे में, पति को परिवर्तन करना भी स्त्री के ही हाथ में है। अगर पति आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगतिशील हो तो पत्नी क्या करना चाहिए? उसको पालन करना चाहिए, वो जो भी बोलता है उसको पालन करना चाहिए। अगर पति अदम हो नहीं तो भक्ति में बड़ा नहीं हो तो क्या करना चाहिए? अपनी नम्रता के द्वारा, अपनी सेवा भावना के द्वारा, अपनी सहकार्य के द्वारा पति के हृदय को चुरा लेना चाहिए, जिसके द्वारा पति भी क्या करेगा भक्ति में वो आगे बढ़ सकता है। तो कभी कभी होता है इस इस्कॉन में पति पत्नियों के बीच में कभी झगड़ा होता है। कारण क्या है? पत्नी जो होती है वो बहुत आगे बढ़ी है और पति आगे बढ़ा नहीं है, तो दोनों के बीच में झगड़ा होता है। पत्नी बोलते हैं हम मंदिर में जाएंगे, पति बोलते हैं हम सिनेमा में जाएंगे, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। पत्नी बोलते हैं मैं सिर्फ प्रसाद खाऊंगी, पति बोलता है नहीं मैं पार्टी बुलाने वाला हूँ, हम होटल में जा रहे हैं होटल में हम खाएंगे, ऐसे बोलता है। पत्नी बोलती है मैं साड़ी पहनूंगी, हम सर को ढक कर हम मंदिर में जाएंगे, ऐसे। पति बोलता है तुमको मॉडर्न ड्रेस पहनना चाहिए, ऐसे इस तरह कभी झगड़ा होता है। तो ये कभी कभी इस झगड़े के कारण क्या होता है, अनेक स्त्रियां सोचती हैं हमारा शरण जो हम लेते हैं ये आध्यात्मिक होना चाहिए, द रियल शेल्टर इज इन कृष्णा, कृष्णा का हमें आश्रय लेना चाहिए। ये क्या पति जो है वो भी एक जीव है, वो भी बद्ध जीव है, हमारा मृत्यु होने वाला है, उनका मृत्यु होने वाला है, हम सीधा हम भगवान का शरण लेंगे, इस तरह कुछ स्त्रियां सोचती हैं। इसके कारण डाइवर्स होता है, घटस्फोट होता है इसके कारण। तो स्त्रियों को मालूम होना चाहिए कि पति जो है वो सुरक्षा देने वाला है, अगर वो कर्मी भी हो, अगर वो भक्त भी नहीं हो, एक भी माला नहीं करता हो, मांस खाने वाले भी हो, शराब पीने वाले भी हो, फिर भी वो भक्ति करने वाले एक माता जी की वो सुरक्षा दे सकता है, ये हमेशा समझना चाहिए। इसलिए पत्नी का असली स्थान क्या है, वो पति के साथ रहना, नारी नाम भूषणम पति, ऐसे बताया गया है। आपको ये बुद्धिमत्ता चाहिए, अकल चाहिए, कैसे भक्ति भी किया जाए साथ साथ पति को भी क्रोध न करें, हम दोनों को कैसे साथ में लेके जाए। आप में से हो सकता है कि अनेक माताओं के पति भी भक्ति करते हैं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि आपके पति भक्त नहीं है और भक्ति भक्तिमय जीवन को वो उनको पसंद नहीं है भक्तिमय जीवन, तो आपको कभी कभी चुपके से भक्ति करना पड़ता है आपको। लेकिन पत्नी का स्थान क्या है? पति के साथ ही। डाइवोर्स का शब्द शास्त्र में है ही नहीं, ये संस्कृत में आपको मिलेगा ही नहीं ये शब्द है। ये तालाक और घटस्फोट वगैरह बोलते हैं, सब हिंदी और उर्दू शब्द हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृति में अगर पति पत्नी के बीच में कुछ झगड़ा हुआ तो सिर्फ पत्नी अपने माँ बाप के पास चली जाएगी कुछ समय के लिए और पति आकर उसको वापस लेके जाएगा, बस हो गया, उसके बाद थोड़ा शांत रहेंगे, यही वैदिक संस्कृति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो कभी कभी हम देखते हैं कभी स्त्री पुरुष आजकल शादी करते हैं, पुणे में एक दिन में 8 डाइवर्स हो रहे हैं आजकल, अपने पेपर में पढ़ा होगा, 8 लोग डाइवर्स कर रहे हैं। क्या इस्कान संस्था के अंदर डाइवर्स आ सकता है या डाइवर्स इस्कान है? जब अपनी पोजीशन, क्या बोलते हैं, स्थान को समझते नहीं, हमें सहकार्य करना चाहिए। किस लिए? भगवान की खुशी के लिए। तो प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी बोलते थे, अरे मूर्खो, मेरे गुरु चले जाने के बाद उनके शिष्यों ने आपस में झगड़ा करके अलग अलग गौड़िया मठ को शुरू किया, लेकिन आप लोग इतने बड़े मूर्ख हो, मेरे उपस्थिति में आप लोग झगड़ा करते हो। ऐसे प्रभुपाद जी उनके शिष्यों को डांटते थे। इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि मैं एक व्यक्ति को मैं गुरु नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, GBC को बनाऊंगा, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर। प्रभुपाद ने बोला कि इस्कान संस्था जो है इसमें यहाँ पे 40-50 गवर्निंग बॉडी कमिश्नर हैं, GBC हैं, ये लोग साथ में सारे दुनिया के केंद्रों को ये लोग चलाएंगे। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को बनाया जाए पहले, वो एक व्यक्ति सारे इस्कान को संभालेगा सारे दुनिया में, अगर उसको कुछ हो जाए तो सारा संस्था जो हो वो गटर पे चला जाएगा। इसलिए प्रभु ने क्या किया, ये GBC गवर्निंग बॉडी कमिश्नर बनाया ऐसे। और हमें देखना चाहिए कि प्रभुपाद के सब शिष्य जो होते हैं, अलग अलग शिष्य, ये सब लोग GBC को पालन करते हैं जैसे वो पहले प्रभुपाद जी को पालन करते थे ऐसे, और हम उन प्रभुपाद के शिष्यों के अंडर में हम दीक्षा लेते हैं। तो पहले अगर हम परिवार में पति पत्नी के साथ अच्छा संबंध नहीं है, देखिए अगर ब्रह्मचारी होते हैं आश्रम में, ब्रह्मचारी के बीच में भी मतभेद होता है, कभी वो झगड़ा होता है, एक व्यक्ति एक बोलता है दूसरा बोलता है, कभी कुछ मतभेद आने की संभावना है। लेकिन एक ब्रह्मचारी एक व्यक्ति की मित्रता को छोड़कर दूसरे ब्रह्मचारी से वो क्या कर सकता है, मैत्री जोड़ सकता है। लेकिन अगर आप पति पत्नी हो, आजकल माँ बाप भी साथ में नहीं रहते हैं पति के, है ना, आजकल न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या है, एक पुरुष एक स्त्री और उनके एक दो बच्चे, बस इतना ही रहते हैं परिवार में। ऐसे छोटे परिवार में अगर आप झगड़ा कर लिया, पति पत्नी के बीच में झगड़ा आ गया, आपका मैचिंग नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, आपको आजीवन एक दूसरे के चेहरा देखना पड़ेगा, है ना, और आप उनको छोड़कर हम कहीं और नहीं जा सकते हैं। इसलिए पहले सहकार्य हमें सीखना चाहिए घर में ही, अपने खुद के घर में पहले सीखना चाहिए। अगर हमारे पति पत्नी के बीच में सही समझ नहीं, तो आप ये योग्यताओं को देखिए, मेरे अंदर क्या योग्यता की कमी है जिसके कारण हमारा संबंध में मिठास नहीं है। तो हमने पढ़ा, एक सुंदर सेंटेंस पढ़ा हमने, द मेटीरियल साइड ऑफ मैरिड लाइफ इज ऑलवेज मिसरेबल, द स्पिरिचुअल साइड ऑफ मैरिड लाइफ इज ऑलवेज स्वीट। इसका मतलब क्या है, पारिवारिक जीवन के भौतिक जीवन, अगर कोई सिर्फ भौतिक जीवन जीते हैं वो हमेशा दुखदायक होगा। पारिवारिक जीवन में अगर पति पत्नी आध्यात्मिक रूप से जीवन जीते हैं, वो एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे को प्रेम करेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, तो वो बहुत सुखमय जीवन होगा। हमने इंग्लिश में और एक सुना, द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, द फैमिली विच सिंग्स टुगेदर क्लिंग्स टुगेदर, द फैमिली विच डांसेस टुगेदर एडवांसेस टुगेदर। इसका मतलब क्या है, प्रेज, जो परिवार में लोग द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, अगर आप रोज सुबह उठेंगे अपने घर में, पति पत्नी 12 माला तक कर लेते हैं आप साथ में, और साथ में जप करना चाहिए। अगर हम करेंगे इस तरह, पत्नी बच्चे सब साथ में बैठ कर करते हैं, सुबह सुबह उठकर मंगल आरती करते हैं, तो फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, दे कैन स्टे टुगेदर, फैमिली विच डांसेस टुगेदर एडवांसेस टुगेदर, जो बहुत अच्छी तरह भगवान के कीर्तन में नाचते हैं गाते हैं वो भी आगे प्रगति करते हैं। फैमिली विच सिंग्स टुगेदर, जो कीर्तन करते हैं, कीर्तन निरपराध भावना के साथ, निस्सहाय भावना के साथ, हृदय पूर्वक जो क्या हुआ, कीर्तन जो है वो हमारे हृदय के कलमशों को खत्म कर देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस तरह का महामंत्र निरपराध भावना से जो किया जाता है ना, उससे हमारे हृदय में जो अहंकार है, ईर्ष्या भावना है, क्रोध भावना है, अपने बारे में बड़ा सोचना, ये सब पूरा खत्म हो जाता है। तो पति पत्नी एक दूसरे को आदर दे पाएंगे अच्छी तरह। तो ये पारिवारिक संबंध है, एक परिवार के अंदर। जैसे हमने उदाहरण दिया आपको पत्नी और पति का, ये आश्रिता और आश्रय का तत्व है। आश्रय का मतलब है तो आश्रय देने वाला पति है, और आश्रित का मतलब है वो पत्नी है। हालांकि जैसे हम बोलते हैं कृष्ण और राधा और कृष्ण में, राधा और कृष्ण में कौन श्रेष्ठ है, तत्व के रूप में देखा जाए तो कृष्ण श्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण से ही राधा रानी आती है। कृष्ण की हलादिनी शक्ति कौन है, राधा रानी है, इसलिए कृष्ण श्रेष्ठ है। लेकिन लीला के रूप में देखा जाए तो कौन श्रेष्ठ है, राधा रानी श्रेष्ठ है, क्योंकि राधा रानी को बताया गया मदन मोहन मोहिनी ऐसे बोला गया लीला के तौर पर। इस तरह घर में भी श्रेष्ठ कौन है, पुरुष है, क्योंकि इज अ प्रोवाइडर। प्रोवाइडर का मतलब वो क्या करता है, घर का पोषण करने वाला है, सब सुविधा देने वाला है, इसलिए पति श्रेष्ठ है। लेकिन घर में प्रेम की वातावरण लाने वाली कौन है, स्त्री है। स्त्री को गृह लक्ष्मी बताया गया है, तो वो आश्रित है, वो आश्रित। जब वो सही ढंग से आश्रय लेती है पति का, पति जिस तरह राधा रानी इतना बुद्धिमान है, कृष्ण की इतना अच्छी तरह आश्रय लेती है, तो कृष्ण उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। देखिए आपने सुना है एक ऐसे लीला आता है वृंदावन में, मान मंदिर नाम का एक बहुत बड़ा पहाड़ है वृंदावन में, आप देखेंगे उस मान मंदिर में राधा रानी अपने सखियों के साथ बैठी है। तो कृष्ण जब जाते हैं, कृष्ण राधा रानी को बताते हैं कि देखो तुम्हारे चेहरा जो है एक सुंदर चंद्रमा के समान है। तो राधा रानी क्रोधित हो जाती है, चंद्रमा के समान है, चंद्रमा में देखो कितना दागा है, मेरे चेहरे में क्या कुछ दागा है मेरे चेहरे में, इसलिए वो क्रोधित हो जाती है और दूसरी बार मुड़ लेती है अपने सर। लेकिन कृष्ण उसके क्रोध को शांत करने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, वो दूसरी ओर जाते हैं, वो इस ओर मुड़ लेती है अपने सर, वो देखती नहीं है। तो भगवान अपने सर झुकते हैं उसके पाँव में, फिर भी वो उसका क्रोध कम नहीं होता। देखिए राधा रानी की क्रोध भी क्यों होता है, भगवान की खुशी के लिए होता है। तो भगवान क्या करते हैं, उधर उधर छोड़कर वो दूसरे पहाड़ में चढ़ जाते हैं, और उधर जाकर बहुत सुंदर तरीके से अपने को सजा लेते हैं एक मोर के समान, और नाचना शुरू करते हैं बहुत अच्छी तरह। तो राधा रानी पूछती अपने सखियों को, ये लगता है कि कृष्ण चला गया है, तो इधर देखती है और दूसरे पहाड़ में कृष्ण खड़े हैं उधर और अच्छी तरह नाच रहे हैं। तो उसको देखती है और देख देख कर वो भूल जाती है अपने क्रोध को, वो मुस्कान करने लगती है, हंसती है। तो ये भी नीचे उतर कर वो भी उस पहाड़ में चढ़ जाती है, और खुद भी एक मोर की कपड़े पहनकर कृष्ण के साथ वो भी नाचना शुरू कर देती है। इस तरह लीला करते हैं। मोरकुटी नाम का एक जगह है, आप देखेंगे वृंदावन में, तो इसलिए हम हमारे डेटीज को भी हम मोर के कपड़े पहनाते हैं कभी कभी, देखा आपने कभी। तो इस तरह राधा रानी की लीला, राधा और कृष्ण की लीला जो होता है ना, उसमें प्रेममय वातावरण को बढ़ाने वाली कौन है, वो राधा रानी है। इस तरह घर में भी, घर में एक दिव्य वातावरण और प्रेमय वातावरण को फैलाने वाली, फैलाने की शक्ति सिर्फ एक स्त्री के पास है। पुरुष जो होता है वो बाहर जाता है दुनिया में, तरह तरह के तकलीफों को सहन कर वो वापस आता है घर में, तो घर में विश्राम के लिए और प्रेम के प्यास होकर वो आता है घर में। और अगर घर में आने के बाद कुछ चिड़चिड़ है, चिड़चिड़ाने वाली पत्नी होती है, तो उसको और भी दुख ज़्यादा हो जाता है। और आप इसी उदाहरण को लेकर पकड़ कर आप समझिए, अभी इस्कॉन संस्था जो है ये आश्रय है, आश्रय तत्व है, हम सबको आश्रय देता है। और हम सब जीव कैसे हैं, हम आश्रित हैं। अगर हम आश्रित हैं पत्नी के समान, हम प्रकृति हैं, हम आश्रित हैं, तो ये अलग अलग तौर पर देखा जा सकता है। जैसे एक मंदिर के सब भक्त हैं, एक अध्यक्ष होता है, नहीं तो ये गुरु के शिष्य होते हैं, ये गुरु होता है, नहीं तो इस्कॉन की संस्था होता है, संस्थापकाचार्य प्रभुपाद जी होते हैं। इस तरह आप आश्रय और आश्रित को आप अलग अलग तौर पर आप देख सकते हैं। तो आश्रित के रूप में क्या हम अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं कि नहीं, हमें पूछना चाहिए। पहला कर्तव्य मैंने क्या बोला आश्रित का, याद है किसी को, पहले मैंने क्या बोला, सेवा करना। हाँ, तो हम इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, हमें पूछना चाहिए क्या मैं सेवा करता हूँ, करती हूँ, पूछना चाहिए हम क्या सेवा कर रहे हैं इस संस्था के लिए। तो जैसे लिंकन, अब्राहम लिंकन ने बोला ना, आप ये मत पूछो संस्था तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, आप ये पूछो उस संस्था के लिए आप क्या कर रहे हो वो पूछो है? ये पहला चीज है, हमें सेवा करना चाहिए, सेवा में जुड़ना चाहिए। और दूसरा है क्या बोला? हाँ, बीइंग फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब क्या है? हमें हमारे अधिकृत व्यक्तियों के साथ फेवरेबल होना चाहिए। बड़े से फेवरेबल, अनुकूल, अनुकूल होना चाहिए। तो इसमें कभी कभी मतभेद हो सकता है। जैसे इधर जो बैठे हुए हैं भक्त हैं, ये अनेक गुरु के शिष्य हैं, अलग अलग गुरु के शिष्य हैं, तो इसके कारण कभी कभी लोगों का सोचना होता है कि अध्यक्ष, मंदिर के अध्यक्ष जो है वो जिस गुरु के शिष्य है, ये मंदिर उस गुरु का है। इस तरह लोग सोचते हैं। ये पुणे मंदिर के अध्यक्ष राधानाथ स्वामी के शिष्य है, तो ये अभी राधानाथ स्वामी का राज्य चल रहा है इधर। इस तरह कुछ लोग बात करते हैं। ये बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि इसका किसी एक गुरु का नहीं है, इसका प्रभुपाद जी का है। जैसे पेड़ जो होता है ना, पेड़ में अनेक डालियां होता है। चैतन्य महाप्रभु एक पेड़ के समान है, उस पेड़ में अनेक डालियां होते हैं, और उस डालियों का भी और भी छोटे छोटे डालियां आते हैं उसमें से। इस तरह चैतन्य महाप्रभु के पेड़ के एक डाली है कौन? प्रभुपाद जी, जिन्होंने इसका शुरू किया है। और उस पेड़ के उस डाली के अनेक छोटे छोटे डालियां होते हैं, जो अनेक गुरु हैं इस्कान में है। तो इस्कान एक संस्था है, और ये संस्था के अंडर में आने वाले सब गुरु जो होते हैं वो इस्कान को चला रहे हैं। तो हम सबके सामने प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद के पीछे उनके शिष्य हैं, और उनके पीछे हम सब लोग चल रहे हैं। ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो मंदिर के अध्यक्ष कोई भी हो, चाहे वो गोपालकृष्ण महाराज के डिसिपल हो, लोकनाथ स्वामी के हो, राधानाथ स्वामी के हो, भक्तिचार्य स्वामी के हो, जयपताका स्वामी के हो, किसी के भी हो, वो व्यक्ति का कर्तव्य है सब लोगों को प्रोटेक्शन देना। जैसे मैंने बोला, प्रोवाइडर का मतलब है सब लोगों को सुविधा देना भक्ति करने के लिए। जैसे ये जो सुबह का कार्यक्रम हमने किया है, ये ऐसा नहीं कि मैं राधानाथ स्वामी का शिष्य हूँ इसलिए राधानाथ स्वामी के शिष्यों के लिए मैं अलग कार्यक्रम करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब शिष्यों के लिए है। और प्रोटेक्टर का मतलब है सब, आप सब लोगों की भक्ति को सुरक्षित रखना। जो आपको प्रवचन देते हैं और उनके प्रवचनों को सुनने से हमारे अंदर दिव्य भावना उत्पन्न होता है और आपकी भक्ति सुरक्षित रहेगा। और वो कार्यक्रम भी सबके लिए खुले हैं, अटेंड कर सकते हैं आप सब लोग। तो गाइड का मतलब है जो गाइडेंस देने वाला है। तो हमारे मंदिर में इतने तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, समय समय पर फेस्टिवल्स होते हैं, जो इस तरह के सुबह के कार्यक्रम होते हैं, शाम को बाहर भी कार्यक्रम होते हैं, काउंसलिंग सिस्टम स्थापन किया है, वरिष्ठ वैष्णव सभा है। तो इस तरह अलग अलग श्रेणी के लोगों को अलग अलग तरह से गाइडेंस दिया जाता है। ये गाइडेंस की अपेक्षा ऐसा है कि आप इधर जो भी बैठे हो, आपके हर एक को एक भक्त से संबंध होना चाहिए, जो आपको आध्यात्मिक जीवन में आपको गाइडेंस दे सके। इसलिए हमने काउंसलर काउंसिलर्स को सुबह के कार्यक्रम में हमने बुलाया है। तो जिस तरह मेरी ओर से मैं प्रयत्न करता हूँ आप लोगों को मदद करने के लिए, इस तरह आपकी ओर से ये जो चार कर्तव्य हैं उसको निभाना आपका भी कर्तव्य है। पहला जो है मंदिर में आकर सेवाओं में भाग लेना। जैसे हम नया मंदिर की बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू होने वाला है, तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि इतने अनेक बिबेवाड़ी में एक हमारा केंद्र है, बिबेवाड़ी में, धनकावाड़ी में एक केंद्र है, कालेवाड़ी में एक केंद्र है, कोतरोड में एक केंद्र है, नगर में एक केंद्र है। इस तरह अनेक छोटे छोटे केंद्र होते हैं हमारे इस्कान पूना मंदिर के। लेकिन प्रभुपाद जी ने समझाया ये केंद्रों को कैसे हमें चलाना चाहिए। छोटे छोटे जो केंद्र होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, शाखाएं बोलते हैं ना, होते हैं सैटेलाइट सेंटर होते हैं। तो सैटेलाइट सेंटर को क्या करना चाहिए हमें, पहले भक्त लोग साथ में आकर मिलजुल कर भक्ति करना, फेस्टिवल मनाना सब कर सकते हैं। जब जन्माष्टमी आता है वो कलेक्शन करते हैं, अगर 1 लाख कलेक्शन किया उन्होंने तो हम 50% हम उनको देते हैं, ताकि वो सेंटर को चलाने के लिए उनको काम में आएगा पैसा ऐसे। तो जिस तरह हमारे शरीर के अलग अलग अवयव होते हैं, जैसे हाथ, आंख, कान, सब कुछ, वो पेट की सेवा करते हैं, है ना, ये उदाहरण देते ना, यथातर और मूल निषेच ना। इस तरह मंदिर जो है वो केंद्र है, अब सब शाखाएं जो हैं अलग अलग जो है ना, उनको क्या करना चाहिए, मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए मदद करना चाहिए। जैसे आप सब लोग इधर साथ में आए हो, हम क्यों साथ में आते हैं, साथ में आने से हमारी शक्ति बढ़ता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ता है। और इधर ये हफ्ते में एक दिन साथ में आते हैं और बाकी टाइम बाहर जा अपने अपने जगह में एक छोटे छोटे कार्यक्रम को हम चलाते हैं। और उधर आपको अगर कुछ मंदिर बांधना है तो आपको क्या करना चाहिए, उसी एरिया में जिस एरिया में आप प्रचार करते हो, जैसे नगर में, उदाहरण के लिए हम नगर में प्रचार करते हैं, अभी नगर के लोग एक मंदिर बनाना चाहते हैं, वो मंदिर नहीं बोलेंगे उसको प्रीचिंग सेंटर वो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसा कौन देगा उनको पैसा बनाने के लिए, नगर के ही भक्त लोग नगर में ही कलेक्शन करेंगे वो लोग। अगर कोत रोड में एक प्रीचिंग सेंटर हम बनाना चाहते हैं तो कोत रोड में बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उधर के लोग कोत रोड में कलेक्शन करना चाहिए और उधर के ही लोगों को इंस्पायर करके एक मंदिर बनाना चाहिए। इस तरह कालेवाड़ी हो, इस तरह बिब्यवाड़ी हो, इस तरह धनकावड़ी हो, कोई भी ऐसे हैं। क्योंकि मैं इसके बारे में क्यों आपको बोल रहा हूँ, रिसेंटली कुछ लोगों की इच्छा है कि कालेवाड़ी में, धनकावड़ी में, अलग अलग जगह में एक प्रीचिंग सेंटर हो, तो कुछ भक्त लोगों का सोचना, उनका मत ऐसा है हमारे खुद का मंदिर होना चाहिए ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बुलाकर बोला कि मेरे गुरु भक्तिनाथ सरस्वती, उनकी इच्छा थी कि उनके सब शिष्य साथ में रहकर उनके संस्था को चलाए, लेकिन वो चले जाने के बाद क्या हो गया, भक्तिनाथ सरस्वती के सब शिष्य अलग अलग हो गए, वो अपने अपने गौड़िया मठ शुरू कर दिया, देवानंद मठ, श्रीवास मठ, अलग अलग मठ शुरू कर दिया उन्होंने, 64 मठ अलग अलग हो गए वो लोग, क्योंकि वो छिन्ना भिन्न हो गए, अलग अलग हो गए, जिसके कारण उनके अंदर शक्ति नहीं रही, जिसके कारण वो ज़्यादा प्रचार नहीं कर पाए। इसलिए गौड़िया मठ आप देखेंगे, आजकल भी गौड़िया मठ हैं अनेक जगह पर, लेकिन छोटा छोटा मठ है, एक मठ में कोई पुजारी बेल बजा रहा है, आरती चल रहा है, लेकिन प्रचार नहीं कर पाते हैं वो शक्ति के साथ, क्योंकि वो अकेले अकेले हो गए। आपने सुना है ना कहानी, जैसे चार गाय थे, चार दिशा में चले गए, पहले वो तो साथ में थे, जब एक शेर आता था अपने सींग को दिखाकर वो शेर को डरा दिया और शेर भाग गया पहले, लेकिन बाद में शेर ने उनके कान में कुछ बोल दिया, जिसके कारण चारों के चार गाय क्या हो गए, चार दिशा में चले गए। उसके बाद वो सिंह ने क्या किया, अकेले उनको पकड़ पकड़ कर मार दिया, मारकर का डाला उनको। इस तरह जब हम साथ में रहते हैं तभी शक्ति है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को बोला, देखो आप सब लोग साथ में रहो, एक दूसरे को मदद करो। और जीबी से में भी प्रभु ने ऐसे 40-50 लोगों को जीबी से बनाया, क्यों, क्योंकि साथ में आकर जितना भी मतभेद हो एक दूसरे को मदद करते हुए प्रभुपाद की मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। इसलिए प्रभुपाद ने इतने उपदेश दिया है, इफ़ यू वॉन्ट टू शो योर लव फॉर मी, कोऑपरेट अमंगस्ट वन अनदर। प्रभुपाद ने ऐसे बोला, अगर आप मुझे तुम्हारा प्रेम दिखाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए आपको, आप एक दूसरे से सहकार्य करना आवश्यक है। आप लोग इधर जो भी बैठे हो, आपको किसी भी तरह का मंदिर की चलाने में आपको शंका है, आपको डाउट्स है, आपको अनेक लोग अनेक चीज़ बोलेंगे आपको, अनेक लोग ऐसा हो भी सकता है आपको गलत चीज़ों को भी वो लोग सिखाते हो। जैसे उदाहरण के लिए उन दिनों में मैं जब अध्यक्ष था 1997 में, ऐसे एक समय आया 1998-99 में, कुछ लोग बोलने लगे कि इधर मंदिर में बहुत समस्या होता है, इधर राधा स्वामी के शिष्य हैं, गोपालकृष्ण महाराज के शिष्य हैं, एक दूसरे के समस्या होता है, अच्छा है कि हम पुणे में हम दो मंदिर बांधे, एक मंदिर में राधा स्वामी के लोग रहे, दूसरे मंदिर में गोपालकृष्ण महाराज के लोग रहे, तो शांति से रह सकते हैं, कोई झगड़ा नहीं होगा, ऐसे एक भक्त ने सुझाव दिया था। तो मैंने इस बात के संबंध में दोनों के साथ बात किया, राधानाथ स्वामी के साथ और गोपालकृष्ण महाराज के साथ, मुझे इतना डांट करना पड़ा मुझे इसके लिए। उन्होंने बोला, किसने बोला इस तरह का मूर्ख सुझाव, इस तरह करने से हमारे पूरा संस्था छिन्ना भिन्न हो जाएगा, ऐसे ऐसा नहीं कि किसी भी मंदिर एक महाराज का मंदिर है। आप लोग देखिए, हमारे अनेक विद्यार्थियों के वॉइस होते हैं, वॉइस मालूम आपको, स्टूडेंट सेंटर, उसको वॉइस सेंटर होते हैं, एक है धनकावड़ी के पास, एक है सिंहगढ़ के पास, किसी भी वॉइस में आप नहीं देखेंगे हमारे आल्टर में उधर राधानाथ महाराज का फोटो है, आप नहीं देखेंगे, क्योंकि वॉइस इज अ पब्लिक सेंटर। इसलिए हमने सिर्फ परंपरा में किधर तक रखा है, प्रभुपाद जी के तक रखा है बस, प्रभुपाद के बाद हम नहीं रखते हैं। जो भी आरती करता है वो अपने गुरु के फोटो रख कर वो आरती करता है, उसके बाद फोटो को अलग रख देता है। आप कहीं भी नहीं देखेंगे हमारे वॉइस में बड़े बड़े राधानाथ स्वामी के फोटो इधर आप नहीं देखेंगे। और हमेशा हम सुबह हम मंगला ये जो प्रेम ध्वनि बोलते हैं उसमें वर्तमान आचार्य वृंद की ऐसे बोलते हैं, उसमें वर्तमान आचार्य का मतलब सब आचार्य आ जाते हैं उसमें। उसमें गोपालकृष्ण महाराज हैं, लोकनाथ स्वामी हैं, राधानाथ महाराज हैं, बक्चार स्वामी हैं, जयप्रदा स्वामी हैं, हाँ सब गुरु उसमें आ जाते हैं वर्तमान आचार्य वृंद में। और यही मैंने सिखाया 1996 में जब मैंने प्रचार किया, तभी मुझे मालूम था कि भविष्य में अनेक गुरु के शिष्य आएंगे, अगर हम राधानाथ महाराज की जय बोलेंगे तो वो भी वही बोलेंगे। इसलिए उस समय से मैंने कभी भी बोला नहीं है किसी भी सेंटर में, हमने पहले से बोल कर आया है वर्तमान आचार्य वृंद की जय। इसलिए आप कहीं भी जाइए हमारे सेंटर में सब लोग वही बोलेंगे। तो इस तरह ट्रेनिंग देना आवश्यक है। और कभी कभी कुछ बीच वाले लोग वो आपको बोलेंगे कि हम अपने गुरु का मंदिर बनाएंगे, वो धनकावाड़ी में हो, कालेवाड़ी में हो, कहीं भी हो। लेकिन आप एक बात समझिए, जो लोग आपको बोलते हैं कि हम अपने गुरु का मंदिर बांधेंगे, क्या उनको मंदिर चलाने की क्षमता है उनके अंदर, आप पूछना चाहिए जो लोग आपको बोलते हैं। क्योंकि मंदिर चलाना उतना आसान काम नहीं है। मैं भी मंदिर को मैं खुद अकेला चलाता नहीं, एक बड़ा टीम होता है, 10-12 लोगों की टीम होता है, मैनेजर लोग होते हैं, कुछ मदद मैं लेता हूँ महाराज जी लोगों से, कुछ मदद लेता हूँ वरिष्ठ भक्तों से। तो मंदिर चलना बहुत कठिन बात है। तो भक्त लोग जो होते हैं उनको ये बात पहले समझना चाहिए, अगर आपको आपके बीच में कोई गलतफहमी फैला रहे हैं तो आप सीधा मेरे पास आ सकते हैं। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप अपने गुरु के पास जाना चाहिए, आपके गुरु के पास जाकर पूछिए ये जो लोग हम बोल रहे हैं क्या सही है कि गलत है, जो हमको गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपको जो प्रचार कर रहे हैं, कभी कभी उन लोगों को, जैसे मैं परिवार की उदाहरण दिया पहले, है ना, परिवार का उदाहरण दिया, पति पत्नी का झगड़ा होता है, इस तरह उसके बाद आप ले सकते हैं काउंसलर काउंसिली। आप बोलते हैं कि हम इस माता जी की हम काउंसिली हैं, हम इस प्रभु जी की काउंसिली हैं, और आप सोचते हैं दूसरे काउंसलर जो है ना हम उनको मुड़कर देखेंगे भी नहीं ऐसा, क्योंकि वो दूसरे काउंसलर हैं और उनके अंडर में जो है वो उनके काउंसलर नहीं, हम देखेंगे नहीं उनको भी, हाँ। इस तरह कुछ लोग करते हैं, ये भी नवसिख्या अवस्था है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, काउंसलर के स्तर पर जो लोग हैं ना उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है पुणे में, आपको मालूम है, सब काउंसलर साथ में आते हैं हर बुधवार को, उनको भी मैं मीटिंग लेता हूँ, कभी कभी मैं लेता हूँ, कभी कभी वरिष्ठ भक्तों को लाता हूँ उस मीटिंग में, हाँ। उसमें ये सब चीज़ में खुले खुले बोलता हूँ उनको। इस तरह काउंसलरों के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, कभी भी काउंसलर को अपने काउंसिलीज को बोलना नहीं चाहिए कि ये उसको देखो मत, इससे मिलो मत, ये खराब है, ऐसा है वैसा है। ऐसे बोलने से क्या है, काउंसिली जो होते हैं उनको अपने काउंसलर के ऊपर जो विश्वास उड़ जाएगा वो, हाँ। इसलिए काउंसलर काउंसिली जो होते हैं पहले, कभी कभी वो ग्रुप के अंदर भी झगड़ा हो सकता है, ये ग्रुप के अंदर भी, क्योंकि अगर 20-25 लोग हैं आपके एक ही काउंसलर के अंदर में, उनके बीच में भी झगड़ा हो सकता है, उस पहले उसको भी ठीक करना चाहिए। उसके बाद आपके काउंसलर काउंसिली और दूसरे काउंसलर काउंसलर मिलजुलना चाहिए। इसलिए यह संडे कार्यक्रम रखते हैं जिसमें सब काउंसलर सब काउंसिली साथ में आते हैं, साथ में नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे वेनसडे जो हमारा काउंसलर काउंसिली प्रोग्राम होता है उसमें भी, सॉरी काउंसलर का मीटिंग, उसमें भी सब गुरु के शिष्य आते हैं, हाँ, भक्ति विकास स्वामी के, गोपालकृष्ण महाराज के, लोकनाथ स्वामी के और राधानाथ स्वामी के, सब आते हैं। कारण क्या है, जब काउंसलर लोगों के बीच में अच्छा प्रेम रहेगा तभी, अगर दो माता जियाँ हैं, एक है राधानाथ स्वामी के शिष्य, दूसरा है गोपालकृष्ण महाराज के शिष्य, दो माता जी हैं, अगर एक दो माता जी मंदिर में आती हैं, साथ में सेवा करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो जब दोनों की काउंसलिंग देखेंगे, हाँ, अरे दोनों इतना अच्छा मिलजुलते हैं, तो वो भी आपस में प्रेम करेंगे। अगर वो देखते हैं कि एक दो माता जी एक दूसरे झगड़ा करते हैं, ये बोलते हैं उनके बारे में बुरा बोलते हैं, ये इनके बारे में बुरा बोलते हैं, तो काउंसलिंग क्या सोचेंगे, तो वो माता जी के अंडर में जो भी हैं वो हमारे दुश्मन हैं, ऐसे वो सोचेंगे, है ना। ऐसे ही प्रभु जीवन के बीच में भी ऐसा ही है। तो इसके बाद आता है ये गुरु के शिष्य जो होते हैं, उनके आपस में मिलजुलना भी बहुत कठिन है, क्योंकि अनेक मतभेद होता है, और वो दूसरे के गुरु के शिष्य हैं। अभी ये गुरु के शिष्य दूसरे गुरु के शिष्य को प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करना, ये सबसे बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती है हमारे संस्था में। एक्चुअली अनेक फॉरेन मंदिर में क्या होता है, वो प्रचार करते हैं, हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी गुरु से दीक्षा लेता है, कोई परवाह नहीं करते हैं फॉरेन में इतना। लेकिन भारत में समस्या इतना क्यों आता है, क्योंकि वैदिक संस्कृति बहुत सालों से है भारत में, और गुरु करना, गुरु के आश्रय लेना और गुरु को पूरा अपने धन मन धन सब कुछ दे देना, न्यौछावर करना, इस तरह की भावनाएं बहुत सालों से वैदिक संस्कृति से आता है। इसका कारण लोग क्या सोचते हैं, मेरे गुरु सबसे बड़े हैं। मैंने पढ़ा कांग्रीगेशन प्रीचिंग जर्नल में एक आर्टिकल आया था, राधानाथ स्वामी ने लिखा था वो आर्टिकल। उसमें क्या बताया उन्होंने, अगर कोई एक गुरु के शिष्य आपके पास आता है, आकर आपको अपने गुरु के बारे में वो प्रशंसा करता है, अगर उदाहरण बताता हूँ मैं, कोई दिल्ली जाकर आते हैं, पहली बार दिल्ली जाकर आए हैं और आपके पास बोलते हैं, प्रभु जी आपको मालूम है हम दिल्ली गए थे, गोपालकृष्ण महाराज रहते हैं उधर, उधर इतना सुंदर भगवद्गीता एक्सपीरियंस, भागवतम एक्सपीरियंस, चैतन्य चरितामृत एक्सपीरियंस, इतना एक्सीबिशन है उधर, इतना सुंदर सुंदर एक्सीबिशन है, करोड़ों रुपया खर्चा करके इतना मंदिर बांधा सुंदर, उधर दिन में हजारों हजार लोग आते हैं, देखिए कितने महान है गोपालकृष्ण महाराज। तो अगर कोई राधानाथ स्वामी के शिष्य कोई सुन रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, अगर ये बोलेंगे ठीक है आपने बोला ना, मैं अभी आपको बोलूंगा, हाँ पा आप जाकर देखो चौपाटी में कैसा हमारा मंदिर है, उधर उनके वैभव को देखो, मैं बताऊंगा तुमको। तो राधानाथ महाराज ने बोला कि तुम बड़ा मूर्ख है, मूर्ख हो तुम। महाराज ने बोला तुमको क्या करना चाहिए, अगर कोई शिष्य अपने गुरु की महत्वता बताता है तो तुमको भी ज्वाइन करके उसके ही गुरु की महान महानता को गुणगान करना चाहिए, ऐसे बोला उन्होंने। इफ यू आर रियली ए मैच्योर डिवोटी यू शुड ग्लोरीफाई दैट डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर। जब हम ये करेंगे तभी आपस में हम मिलजुल कर रह सकते हैं, ऐसे उन्होंने बताया। वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ मैच्योरिटी बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ आई एंड माइंड, अहंकार इतना होता है हमारे अंदर। अगर ये 10 प्रचेत जो हैं, अगर ये अपने बारे में सोचते थे हर एक, वो अलग अलग पेड़ के नीचे बैठ कर वो करते थे, साथ में आकर उन्हें भक्ति किया, इसलिए भगवान ने उनकी गुणगान की। अभी आप समझेंगे क्यों भगवान ने उनकी गुणगान की, क्योंकि साथ में रहकर एक ये जो ये भेद मतभेद होता है, कोई अलग अलग देश से जन्मा है, कोई अलग अलग जाति से जन्मा है, कोई अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, इस तरह कोई एक गुरु का शिष्य है, कोई दूसरा गुरु का शिष्य है, इस तरह के अनेक भेद हैं भौतिक तौर पर देखा जाए तो। उस भौतिक तौर पर देखकर उन भेदों को जो हम देखते हैं, उन भेदों को दूर करके हमें ऊपर उठना चाहिए आध्यात्मिक स्तर पर। अभी जो हम मनाने वाले हैं 10 तारीख को फरवरी 10 ये सुदर्शन महायज्ञ, ये श्री वैष्णव संप्रदाय में आप देखेंगे सब मंदिरों में ये सुदर्शन यज्ञ किया जाता है। इस्कॉन में भी उज्जैन में किया गया, ऐसे अनेक नए मंदिर के लिए उन्होंने किया। कुछ लोग ये सोचने की संभावना है कि ये क्या कर्मकांड नहीं क्या इस तरह की यज्ञ वगैरह करना, लेकिन ये सुदर्शन महायज्ञ जो है ये सिर्फ विष्णु के लिए की जाती है। मैं रिसेंटली गया था, ये सुस्त रोड में एक बालाजी मंदिर है, हम उधर गए थे, तो उधर पुजारी ने बोला कि आपके नाम में मैं अर्चना करता हूँ, अर्चना किया उन्होंने, तो अर्चना करके भगवान को आरती चढ़ाया और आकर दिया मुझे। तो उस समय जब उन्होंने जटारी दिया हमारे सर पर, तभी उन्होंने बोला कि पुनः पुनः दर्शन फलम प्राप्ति रस्तु, ऐसे बोला उन्होंने, क्या है पुनः पुनः दर्शन फलम प्राप्ति रस्तु, आपको बाद बाद भगवान की बार बार भगवान की दर्शन करने का मौका प्राप्त हो, ऐसे। और एक बोला उन्होंने, पुनः पुनः सेवा फलम प्राप्ति रस्तु, वो भी बोला उन्होंने, दो चीज बार बार आपको सेवा करने के लिए मौका आपको प्राप्त हो, ऐसे करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा हमको। तो इस तरह ये जो यज्ञ हम करते हैं, ये यज्ञ सिर्फ विष्णु की, उस मंदिर में भी सुदर्शन यज्ञ चल रहा था जब हम गए थे, सो महासुदर्शन यज्ञ सिर्फ विष्णु, ये जैसे आप पढ़ते हैं भागवत के 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज गुणगान करते हैं ये सुदर्शन की, बहुत से श्लोक हैं ऐसे जो भगवान के महान भक्त हैं, इस तरह की ये किया जाता है सुदर्शन और नरसिंह की यज्ञ किया जाता है, ये सब भक्तों की रक्षा के लिए, और ये प्रोजेक्ट जो नया प्रोजेक्ट आने वाला उसकी रक्षा के लिए, और आने वाले भविष्य में आने वाले वो सबकी रक्षा के लिए किया जाता है इस तरह, और ये विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है। और इस तरह के यज्ञ जब हम करते हैं उसमें सब लोगों को आकर भाग लेकर उस यज्ञ को हमें सक्सेसफुल बनाना चाहिए। आपको मालूम है गोपालकृष्ण महाराज पिछले बार आए थे, बता रहे थे बहुत महाराज खुश हो गए, कि तीन चार महीने में हमारे कांग्रीगेशन ने 5 करोड़ कलेक्ट किया है, ये कितना बड़ी इस वो बहुत खुश हो गए थे। लेकिन कभी कभी जब हम विजय प्राप्त करते हैं तो हम डिले पड़ जाते हैं, लिपने की संभावना है। तो उसके बाद जन्माष्टमी के बाद आपको मालूम है सुदर्शन महायज्ञ का स्कीम हमने लॉन्च किया, तो उसमें से अभी तक सिर्फ 1 करोड़ रुपये आया है। तो अभी 5 करोड़ से हम कितना दूर गए हैं, 6 करोड़ तक गए हैं हम बस। तो हमारी एक्चुअल प्लानिंग ऐसा था कि जन्माष्टमी के पहले हम 15 के 15 करोड़ हम कलेक्शन कर बैठेंगे पूरा, लेकिन 15 के 15 नहीं आया, 5 आया था। लेकिन हमने सोचा कि सुदर्शन यज्ञ के समय हम कम से कम हम और 5 कलेक्शन करेंगे, जिससे 10 तक हम आ जाएंगे। क्योंकि 10 के ऊपर क्या होगा, अनेक लोग सीमेंट देने वाले हैं, ईंट देने वाले हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज़ कमोडिटीज देने वाले हैं। हमने सोचा कि हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन सिर्फ अभी तक 6 करोड़ कलेक्शन हुआ है अभी तक। इसका कारण क्या है, महत्वपूर्ण एक कारण है, क्योंकि मैंने सुना कि कांग्रीगेशन के बीच में बात चल रहा है कि हम अपने महाराज के लिए हम अलग मंदिर बनाएंगे। हाँ, ये जो रेगुलर मंदिर जो चल रहा है, ये राधानाथ महाराज के मंदिर है, हम गोपाल समाज के लिए एक मंदिर बनाएंगे, ये बहुत गलत बात है। ये जो नया मंदिर आने वाला है, ये इस्कॉन का मंदिर है, ये प्रभुपाद जी का मंदिर है, और सब लोग इसमें भाग लेंगे। और आप में से अगर किसी को लगता है कि आपको इसमें भाग नहीं है, आपको मंदिर में उतना सेवा नहीं है, तो मेरे पास आकर सीधा आप मिल सकते हैं, मैं खुद आपको सेवा दूंगा आपको। अभी शुद्ध नित्य चंद्रप्रभु हैं, एक बार आए थे मेरे पास, प्रभु जी मंदिर में कुछ सेवा दीजिए। अभी देखिए शुद्ध नित्य प्रभु हमारे नित्य सेवा के इंचार्ज हैं, कितना अच्छी तरीके से उन्होंने मीटिंग अरेंज की थी, इतने लोगों को लाया उन्होंने। अभी नित्य सेवा का अकाउंट जो है उसको बहुत बढ़ा दिया उन्होंने शुद्ध नित्य चंद्रप्रभु। ऐसे अनेक भक्त सेवा करते हैं, उग्र नरसिंह प्रभु हैं, उग्र नरसिंह प्रभु उनके वाइफ हैं, वो आकर मंदिर में कितना सेवा करते हैं ये NVCC में। जैसे आप हरिदास अनुदास प्रभु हैं, काड़ावसर से, वो दिन में आधा दिन हमारे साथ ही बिताते हैं वो मंदिर में। हम सब उनके बहुत निकट मित्र हैं, हम ऐसे नहीं देखते हैं मंदिर में कि जो राधानाथ स्वामी के शिष्य हैं सिर्फ उनके साथ मित्रता जोड़ो, दूसरों को छोड़ दो। बीच में महाराज जी आए थे, गोपालकृष्ण महाराज, उन्होंने बुलाकर मुझे बोला, राधेश्याम तुम मेरे शिष्यों को तुम सेवा क्यों नहीं देते, ऐसे वो आकर कंप्लेन करते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने बोला महाराज जी को, महाराज आपके शिष्य बहुत योग्य शिष्य, बहुत लोग हैं आपके शिष्य, लेकिन सब लोग बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं, वो आते नहीं हैं। जैसे हमने सेवा दी थी कदम कृष्ण प्रभु को अनाउंसमेंट करने के लिए हर संडे को, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। ऐसे अनेक लोग हैं गोपालकृष्ण महाराज के जो बहुत योग्य हैं, लेकिन मंदिर में आकर जुड़कर लगातार सेवा करने के लिए उनके पास समय नहीं है। लेकिन मेरा विनती है कि आप किसी भी गुरु के शिष्य हो, आप कभी भी ये आरोप नहीं लगाना आप कि सिर्फ मंदिर में एक गुरु के शिष्य को सेवा दिया जाता है। आप जो भी देखते हो मंदिर में, जैसे श्वेतदीप प्रभु हो, नहीं तो कोई भी हो, ये लोगों ने अपनी नौकरी छोड़कर आया है। श्वेतदीप प्रभु पहले नौकरी करते थे वर्ल्डपूल में, जब नया मंदिर की प्रोजेक्ट आया उन्होंने नौकरी छोड़ दिया, अब छोड़कर पूरा मंदिर के साथ हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, ऐसे अब जयदेव प्रभु हैं ऐसे। लेकिन अगर आप में से इधर कोई भी हो, किसी भी गुरु का शिष्य हो, आप बोलो कि प्रभु जी हम दिन रात हम आकर मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम आंख बंद करके आपको हम सेवा दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की प्रोजेक्ट है। अभी हरिदासन प्रभु को हमारे 90 के 90 ब्रह्मचारी जानते हैं, आप उनको पूछिए उनको कितने प्रेम प्राप्त होता है मंदिर में, आप पूछिए, आप शुद्धदेव प्रभु को पूछिए। तो जो भी व्यक्ति मंदिर के साथ जुड़कर रहता है, जैसे पहले आप उदाहरण याद कीजिए, जो डाली जो होता है वो हरा भरा रहता है जब तक वो पेड़ के साथ जुड़ा हुआ रहता है, अगर पेड़ से उसको काटा जाए तो सूख जाता है वो। इस तरह अनेक लोग कभी कभी अलग अलग आरोप लगाते हैं, कुछ लोग गलत चीज़ों को सिखा रहे हैं हमारे कांग्रीगेशन को, जिसके कारण लोगों के मन में अनेक गलत फहमियाँ हैं। और एक गलत फहमियाँ हैं जिसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा, अगर मैं अभी राधानाथ स्वामी का शिष्य हूँ, अगर मैं एक काउंसलर हूँ और मेरे अंडर में 30 लोग रहते हैं, उनको मैं काउंसलिंग देता हूँ, इसका मतलब नहीं है कि 30 के 30 लोग राधानाथ स्वामी ही से ही दीक्षा लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो गोपालकृष्ण महाराज से भी ले सकते हैं, लोकनाथ स्वामी से ले सकते हैं, बक्सर स्वामी से ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। आपके शिक्षा गुरु जो होते हैं ना, वो आपको शिक्षा देने वाले हैं, उनसे शिक्षा लेना चाहिए। लेकिन आपके जो एक होते हैं दीक्षा गुरु, कोई भी हो सकते हैं इस्कान में। यही कारण है हम पुणे मंदिर में अनेक गुरुओं को हम लाते हैं। आपने भक्ति विकास स्वामी को देखा है, राधना स्वामी को देखा है, गोपलक्ष महाराज को, लोकनाथ स्वामी को, आप इनमें से जिनसे भी हमें स्फूर्ति मिलता है उनसे हम दीक्षा ले सकते हैं, आपको मना नहीं है। और इसको हमें खुले खुले सबको बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या है कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, अगर आपके काउंसलर गोपालकृष्ण महाराज के काउंसलर हो तो वो आपको दिल्ली में लेके जा सकते हैं, आपको गोपालकृष्ण महाराज से परिचय करा सकते हैं, गलत नहीं है उसमें। अगर आप राधानाथ स्वामी के काउंसली हो तो शायद वो आपको चौपाटी में लेके जाएंगे, परिचय कराएंगे, उसमें गलत नहीं है। लेकिन आपको फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपको इस गुरु से ही दीक्षा लेना चाहिए। ऐसे गुरु को चुनना आपका स्वेच्छा है, ये कुछ फोर्स नहीं है। और दूसरा समझना चाहिए, काउंसलर जो होते हैं वो आपके गुरु नहीं है, वो आपके एक मित्र हैं। जैसे आपके घर में बड़ा भाई बड़े बहन होते हैं ना, ऐसे काउंसलर आपके ये बड़े भाई बड़े बहन के समान हैं। तो आप जो है प्रभुपाद की संस्था है और आपके दीक्षा गुरु हैं, आप उनसे जुड़े हुए हो, वो समझना चाहिए आपको। आपको कोई भी रोक नहीं सकता आपको गुरु से मिलने से। तो अगर आपके आपको लगता है कि मेरे काउंसलर नहीं तो मेरे मंदिर के अध्यक्ष इनके बोलने में मुझे विश्वास नहीं बैठता है, कुछ समस्या है, तो मैं खुद आपको लेके जाऊंगा आपके गुरु के पास, आप मिल सकते हैं आपके गुरु से। और मेरे अनुपस्थिति में भी, आपके काउंसलर की अनुपस्थिति में भी आपके अपने गुरु के साथ आप बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ शंका हो तो। तो ये सब समझना बहुत आवश्यक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि हम जब भक्तिमय सेवा करते हैं उसमें अनेक बाधाएँ आते हैं जिसके कारण भक्तों के बीच में, ये कलिराज जो होता है ना, भक्तिचार्य स्वामी आए थे पुणे में, उन्होंने बोला कि जिस जगह लोग चार नियम पालन करते हैं, मांस नहीं, जुआ नहीं, अवैध स्त्री संग, नशा नहीं, उस जगह में कलिराज प्रवेश नहीं कर सकता है। और जिस जगह कीर्तन जोर से लोग करते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन, उधर कलिराज भाग जाता है। लेकिन कलिराज सोचता है कि मेरे राज्य को कैसे बढ़ाए कलयुग में, इसलिए भक्तों के बीच में भी वो क्या करता है मालूम है, वह भक्तों के बीच में झगड़ा पैदा करता है। वो ब्रह्मास्त्र है किसका, कली कलिराज का। अगर दो भक्त लोग झगड़ा करते हैं तो वो कलिराज का ब्रह्मास्त्र पहुंच गया दोनों के बीच में, ऐसे हमें समझना चाहिए। ये कलयुग झगड़ा झगड़ा का जमाना है, इसलिए भक्तों को ये मतभेदों को दूर रखकर सहकार्य करना चाहिए, चाहे वो मंदिर के नए मंदिर के प्रोजेक्ट की सृष्टि हो, नहीं तो मंदिर में जब आते हैं आपको मन में जो भी शंकाएं हैं, अगर आपको लगता है कि हमको सही तरह ढंग से हमें मंदिर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप बता सकते हैं, आप बताइए हम कैसे आपको सपोर्ट दे सकते हैं, किस तरह की सपोर्ट चाहते हैं। उन दिनों में मैंने बोला कि मैं खुद आऊँगा सब कार्यक्रम में, सब गुरु के कार्यक्रम में आऊँगा, हमें सब गुरु के कार्यक्रम में सब ब्रह्मचारियों को मैं भेजूंगा। कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं प्रभु जी सबको मत भेजो, कुछ लोगों ने बोला था कि सिर्फ हमारे गुरु के ही शिष्य को भेजो, ऐसे कुछ लोगों ने बोला। नहीं तो मेरी ओर से मैं फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ सब कार्यक्रम में, इसलिए मैंने संडे कार्यक्रम सुबह जो है ना ऐसे कार्यक्रम रखा है ताकि आपको सीखने को मिले, आपके आध्यात्मिक जीवन में जो भी चीज़ें हैं सीखने के लिए, वैसे संडे कार्यक्रम ऐसे हमने रखा है। इसमें सिर्फ काउंसलर काउंसिलर्स, आप में से कितने लोग काउंसलर मीटिंग अटेंड करते हैं रेगुलर, ठीक है, आप में से कितने लोग काउंसलर मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, नहीं तो आप काउंसलर मीटिंग में नहीं हैं, कितने लोग हैं ऐसे, हाँ तो आप लोगों को जुड़ना चाहिए किसी के साथ, हाँ तो आप एक दो हफ्ते में आप जुड़ लीजिए जिनको आप पहचानते हैं, जिनके ऊपर आपको विश्वास है, आप किसी भी गुरु के शिष्य जो होते हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं काउंसलर मीटिंग में, लेकिन आपको अटेंड करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं आप सब लोगों का देख रेख में नहीं रख सकता, आपकी सुरक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि आप तो हजारों संख्या में हो, लेकिन काउंसलरों के द्वारा हर एक भक्त को अटेंशन, क्या बोलते हैं, ध्यान, ध्यान मिल सकता है आपको, प्रेम और ध्यान और आपकी सुरक्षा और आपकी शिक्षण सब कुछ प्राप्त होगा आपको काउंसलर मीटिंग के द्वारा। तो जिस तरह प्रचेतों ने मिलजुल कर भक्ति किया, इस तरह हम लोगों को भी सीखना है कभी ना कभी दिन, एक दूसरे को प्रेम करना और हृदय को विशाल हृदय करना। देखिए हमें हमारे हृदय क्यों विशाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर तो मृत शरीर है, कितने साल हम लोग जीने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और 50 साल 60 साल जीने वाले हैं, तो उसके बाद तो हम ये पदवी को छोड़कर, हम ये शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में हम जन्म लेने वाले हैं, लेकिन ये मृत्यु आने के पहले हमारे हृदय विशाल हो जाना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज की हृदय थी, हाँ, उन्होंने मतभेद नहीं किया, ऐसे उन्होंने भेदभाव नहीं किया हम लोगों के। तो तभी जब हम ईर्ष्या को त्याग कर छोड़कर शुद्ध चित्त के साथ हम भक्ति करते हैं, तभी हम भगवान को आकर्षित कर पाएंगे, जैसे प्रचोदन ने आकर्षित किया। हरे कृष्णा।